हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है और यहाँ पे जो प्रश्न रखे गए हैं ये प्रश्न कुछ तो आप लोग पहले ये प्रश्न पहचानते होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपने शायद पहली बार सुना हो। तो हम प्रयास करेंगे इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए और जो भी हमारे पास सूचना उपलब्ध है, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये चलती रहती है वैष्णव समाज में। जब जब हम लोग प्रचार का कार्य बढ़ाएंगे तब तक क्या होगा, हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन प्रश्नों का हल देना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। एक प्रसंग है जिसमें रूप नारायण सरस्वती वृंदावन जाते हैं और उनकी मुलाकात श्रील रूप गोस्वामी से होती है और वो कहते हैं कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करें और अगर आप हार स्वीकार करते हैं तो आप मुझे लिख कर दे दें विजय पत्र। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने सोचा कि क्यों हम लोग समय व्यर्थ गवाएं। उन्होंने रूप नारायण सरस्वती को विजय पत्र दे दिया। तो श्रील जी गोस्वामी को ये बात ठीक नहीं लगी, तो इसलिए क्योंकि उनके गुरु के सामने इस प्रकार वो व्यक्ति कह गया और गुरुदेव चाहते तो बड़ी आसानी से उसको हरा सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं नम्रता के कारण। तो श्रील जी गोस्वामी ने फिर शास्त्रार्थ किया और बहुत बुरी तरह से हराया उस दिग्विजय को, फिर दोबारा कभी वो वृंदावन नहीं आया। तो इसी तरह से हम सब भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में है और इस संप्रदाय से जुड़े हैं, श्रील प्रभुपाद के इस संस्था से जुड़े हैं। हम सब की जिम्मेदारी है, आने वाले भक्तों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की संस्था और उनकी शिक्षाओं की हम लोग पूर्ण रूपे रक्षा करें और जब भी हमारे वैष्णव समाज में इस प्रकार की भ्रांति आती है या इस प्रकार के अब सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसका खंडन करने के लिए हमारे पास सूचना होनी चाहिए। हालांकि हमारे शास्त्रों का सार हरिनाम संकीर्तन है लेकिन साथ में हमने देखा चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन चरित्र में ये दिखाया कि संकीर्तन आंदोलन के साथ साथ हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ जब भी शास्त्रार्थ की आवश्यकता पड़ती तो चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत किया प्रकाश चंद्र सरस्वती के साथ, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, केशव काश्मीरी के साथ चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आवश्यकता पड़ने पर हमें इनकी चर्चा करनी पड़ती है। हालांकि सामान्य तौर से हम लोग कई इसमें जो प्रश्न है उसकी चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कोई इसकी चुनौती देता है या इसी का ही प्रचार करता है अब सिद्धांत का तो हमारे पास इन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। जहां तक संभव है हमने प्रयास किया है और इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हम प्रयास कर चुके हैं कई दिनों से और इसमें प्रशांत प्रभु ने बड़ी सहायता की है क्योंकि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा टाइप सेटिंग जो है और कंपाइल करना इसमें इन्होंने बहुत मेरी सहायता की है क्योंकि अकेले शायद ये सब करना अकेले ही संभव होता मेरे लिए। तो हम प्रयास करेंगे। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न से, वैदिक साधन भक्ति क्या है और उसके बाद रागानुगा साधन भक्ति क्या है और रूपानुग किसको कहते हैं। इसमें अभी तक हमने कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर दिया है वो आपको पहले बता दें। हमने पहले प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं, तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया हमने, चौथे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है, पांचवें प्रश्न का उत्तर भी हमने दे दिया है और सातवें प्रश्न का उत्तर दिया है, छठे प्रश्न का उत्तर आपको कल मिल जाएगा और उसके बाद आठवें प्रश्न का भी उत्तर लगभग तैयार हो चुका है और उसके बाद ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर भी हम दे चुके हैं। तो तीन दिन का समय है लेकिन हमें लगता है कि तीन दिन का समय जो है पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे जितना हो सके इन दिनों में हम लोग ये सब प्रश्नों का उत्तर देने का हम लोग प्रयास करें। तो सबसे पहले हम वैदिक साधन भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस पूरे प्रसंग का हमने शीर्षक रखा है वैदि से राग मार्ग तक, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि श्रील प्रभुपाद ने हमें केवल वैदि भक्ति दी है, और जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है बात। प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन प्रभुपाद ने हमें इस तरह से दिया है कि हम लोग राग मार्ग की तरफ क्रमशः विकास करें। अगर ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर के द्वारा लिखित गुरु अष्टकम हमें ना देते, जिसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर बता रहे हैं स्पष्ट, श्री राधि कामा धवयोर पारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वाद अनुलोलपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंज योनो रति केलि सिद्धे यायाली भीर युक्ति रपेक्षणीय तत्राति दक्षाद अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये मेरी भक्ति नहीं है। और जैसे हमारा प्रवचन शुरू होता है तो सबसे पहले अभी हम भजन गाते हैं, वो भजन क्या है, जय राधा माधव कुंज बिहारी। नए भक्तों या पुराने भक्तों, सभी भक्त जो है यही भजन गाते हैं। तुलसी आरती जो हम गाते हैं, तुलसी आरती में क्या पंक्ति आती है, मोर या विलास विलास कुंजे दियो वास, यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, ये वैदिक भक्ति नहीं है। ये प्रार्थना राग मार्ग की है। इस प्रार्थना को कहते हैं लालसमयी प्रार्थना। तीन प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, दैन्य बोधि का प्रार्थना, संभ्रात्मात्मिका प्रार्थना और लालसमयी प्रार्थना। जो लालसमयी प्रार्थना है वो राग मार्ग की प्रार्थना है। जो रागानु का साधन भजन करते हैं वो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं जो हम प्रत्येक दिन करते हैं तुलसी आरती गाते हुए। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि प्रभुपाद ने केवल वैदिक भक्ति दिया है। जो उस राग मार्ग के स्तर में होगा उन प्रार्थनाओं का भरपूर लाभ उठाए। तो ये वैदिक साधन भक्ति के बारे में पहले बताया जा रहा। साधन भक्ति क्या है, सबसे पहले बताया जा रहा है भक्ति रसाम सिंधु के अनुसार श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कृति साध्या भविष्य साध्या भावान साधना विदा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता। यानी कि वो सब सेवाएं जिसके द्वारा, दिव्य सेवाएं जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम जागृत होता है उसको साधन भक्ति कहते हैं, या उसको वैदिक साधन भक्ति कहते हैं, जो कि विधि विधानों के अनुसार होता है। सारे प्रश्नों का जो उत्तर है हमने यथारूप पूरा का पूरा दे दिया है, और उसी को केवल हम पढ़ के सुना रहे हैं आपके सामने, क्योंकि ये जितने उत्तर दिए हैं अपने आप में पर्याप्त है, और आवश्यकता होगी तो बीच में हम कुछ बोलेंगे। और इस प्रकार की जो भक्ति है वो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में है, और ये नित्य शाश्वत जो प्रेमयी सेवा है जो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में है, जब जाग जाती है तो वो जीव जो है फिर भगवत धाम जाने के लायक हो जाता है। और ये जो क्षमता है हर जीव में है, हर जीव में ये क्षमता है कि वो इस नित्य सिद्ध यानी कि नित्य जो सिद्ध भाव है उसको वो जागृत कर सकता है। नित्य सिद्ध यानी लिखा है नित्य सिद्ध से भाव से, तो इस दिव्य प्रेम सेवा को कोई भी जीव जागृत कर सकता है, हर जीव में क्षमता है। क्योंकि गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, हाँ। तो कृष्ण के हम लोग अंश हैं, तो हम सब जीवात्माओं में यह क्षमता है कि इस सुषुप्त कृष्ण प्रेम को हम लोग जागृत कर सकते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साधु कवनोय श्रवणादि श्रवणादि शुद्ध चित्त करे होता है। श्रवण कीर्तन के द्वारा इस कृष्ण प्रेम को उदय किया जा सकता है, लेकिन इस श्रवण कीर्तन निर्भर करता है कृष्ण की और शुद्ध भक्तों की कृपा के ऊपर। केवल श्रवण कीर्तन से हम लोग कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हमारे ऊपर शुद्ध भक्तों की कृपा ना हो जाए। तो इसलिए केवल साधना करना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, साथ में कृपा की भी हमें याचना करनी पड़ेगी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत अच्छा बताया है, हरिहराय नमः जो भजन है इसमें नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता। तो ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा सिद्धांत है हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता, यानी कि गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर हम लोग साधन भक्ति कर। तो वैधि भक्ति में क्या है, वैधि साधन भक्ति, जब हमारे पास स्वाभाविक प्रेम नहीं होता है कृष्ण के लिए, स्वाभाविक प्रेम तब तक नहीं जागृत होता और हम लोग गुरु के मार्गदर्शन पे चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो ऐसे नियमित सेवा को वैधि साधन भक्ति कहते हैं। और वैधि साधन भक्ति से हम लोग, कोई वैधि साधन भक्ति करता है और केवल वैधि साधन भक्ति करता है, तो वैधि साधन भक्ति के द्वारा जो प्रेम प्राप्त होता है उससे एक साधक जो है वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। और श्री रूप गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि दो प्रकार की साधन भक्ति है। पहले साधन भक्ति का नाम है वैधि साधन भक्ति, जिसको यहां बताया गया रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, और दूसरा है रागानुगा साधन भक्ति, जिसको बताया गया स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, यानी कि प्रेरणा का स्रोत क्या है इसके कारण यह विभाजन किया गया। प्रेरणा का स्रोत जो रागानुगा भक्ति में है वो स्वाभाविक है, मां का प्रेम बच्चे के लिए स्वाभाविक होता है, कहना नहीं पड़ता है कि नहीं, वो स्वाभाविक होता है, तो राग मार्ग में स्वाभाविक आकर्षण होता है। वैधि भक्ति में जो आकर्षण जो है स्वाभाविक ना होने के कारण जो प्रेरणा का स्रोत है वो कौन है, श्री गुरु है और साथ में शास्त्र है। गुरु के मार्गदर्शन पे चलने पर, शास्त्रों का अध्ययन करने पर, साधु संघ से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और इस प्रेरणा के द्वारा हम लोग वैधि साधन भक्ति में लग पाते हैं। तो रागानुगा साधन कोई भाव की अवस्था नहीं है, प्रेम की अवस्था नहीं, अभी धीरे धीरे हम लोग समझाते जाएंगे और ये सारा स्पष्ट होते जाएगा जैसे हम बताते जाएंगे आपको। तो रागानुगा साधन भक्ति भी साधना का एक भाग है, साधना के दो भाग हैं, वैधि साधना और रागानुगा साधना। अब यहां बताया जा रहा है रागानुगा साधन भक्ति का अभ्यास, तत्त भावादि माधुर्य श्रुते धीर यत अपेक्षते नत्र शास्त्र न युक्तिम च तत् लोभोत्पत्ति लोक्षणम, लोक्षणम नहीं होगा लक्षणम लग रहा है। तो यहां बताया प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं, When an advanced realized devotee hears about the affairs of the devotees of Vrindavan in the mellow of Shant, Dasya, Sakhya, Vasalya and Madhurya Ras, he becomes inclined in that way and his intelligence become attracted. Indeed, he begins to covet that particular type of devotion. When such love is awakened, then one's intelligence does not depend on Shastra, revealed scripture, logic or argument. यहां बता रहे जब उन्नत और वो भक्त जिसको साक्षात्कार हुआ है, वो जब वृंदावन के नित्य परिक्रमों के बारे में सुनता है, जो शांत रस, दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस में स्थित है, तो वो उस तरह से वो प्रेरित होते। वृंदावन में शांत रस लगभग ना के बराबर है, हालांकि यहां पर बताया गया है यह वृंदावन के जैसे गाय है उनको भी बताया गया वात्सल्य रस में है। साधारण गाय जो है वो शांत रस में होते हैं, लेकिन वृंदावन में जो गाय है वो वात्सल्य रस में होते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि जब ऐसे परिक्रमों के बारे में सुनता है एक साधक, किन परिक्रमों के बारे में, जो इन रसों में स्थित है, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस में स्थित है, इन भक्तों के बारे में जब वो सुनता है तो क्या होता है, उसके हृदय में प्रबल इच्छा जागृत होती है। क्या इच्छा जागृत होती है, प्रबल। प्रबल इच्छा किस लिए जागृत होती है, किसके लिए जागृत होती है प्रबल इच्छा, ऐसे परिक्रमों की तरह सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। अगर सख्य रस के प्रति वो प्रेरित है, जब वो सुदामा के बारे में सुनता है, श्रीराम सखा के बारे में सुनता है, तो उनकी तरह सेवा करने की इच्छा होती है, उनके बारे में वो सुनना चाहता है, उनके बारे में वो श्रवण कीर्तन करना चाहता है, और ऐसी लीला स्थलियों के प्रति आकर्षण होता है जहां पे वो ये लीलाएं कर रहे हैं। तो उन लीला स्थली में वो बार बार जाता है, ऐसी लीलाओं के बारे में वो बार बार श्रवण करता है, श्रवण करता है और कीर्तन करता है और ऐसी लीलाओं का वो स्मरण करता है, तो लोभ जागृत होता है उसका। तो श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने भी इस बात को समझाया है। श्रील रूप गोस्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों के ऊपर लगभग श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने टीकाएं लिखी हैं। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है राग वर्तम चंद्रिका। इस ग्रंथ के प्रारंभ में, ये ग्रंथ प्रारंभ ही इसी तरह से होता है, इस ग्रंथ का प्रारंभ यहां से होता है जो यहां पे लिखा है, बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर रागानुगा भक्ति इज इंटेंस ईगरनेस लोभ टू अचीव द सर्विस ऑफ पर्टिकुलर रागात्मिका डिवोटी। जो वृंदावन के जितने भी परिकर हैं उनको रागात्मिका भक्त कहा जाता है, और उनकी तरह सेवा करने के लिए जो प्रबल इच्छा जागृत होती है उसको क्या कहते हैं, लोभ कहते हैं। यानी कि उस प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा जागृत होती है जिस तरह से कौन कर रहे हैं, वृंदावन के वो परिकर कर रहे हैं। और यहां पे लिखा है लोभ कब जागृत होता है, लोभ जागृत होता है जब हम संपूर्ण यानी कि अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेज है जिसमें अनर्थ निवृत्ति होने पर जब हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं तो अगला जो स्टेप आता है उसको रुचि कहते हैं। तो ये रुचि ही वास्तव में लोभ है। तो यहां पर विश्वनाथ जी ठाकुर ने राग वर्तम चंद्रिका में बताया है, क्या बता रहे हैं देखिए, यहां पर बता रहे हैं कि वैदी भक्ति जो है, वैदी साधन भक्ति, वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है, शास्त्रों से प्रेरणा मिलती है। रागानुगा भक्ति जो है वो लोभ के ऊपर निर्भर है। रागानुगा साधन भजन जो है वो लोभ के ऊपर निर्भर है। रूप गोस्वामी लोभ के ऊपर जोर देते हुए बोल रहे हैं, तत्तद् भावादि माधुर्य श्रुते धीर्यत अपेक्षते नात्र शास्त्र न युक्तिं च तद् लोभो प्रति लक्षणम्। हाँ, लक्षण लिखा है। This verse means that after the devotee has heard the detailed descriptions of the sweetness of Lord Krishna's loving spiritual sentiments, Bhav Madhurya with his associates is spontaneously drawn towards those sentiments of Krishna's beloved associates. Such a devotee desiring to possess those feelings shakes free the shackles of logic and scriptural bindings, liberating himself from these bonds is a devotee's first symptom of lobh. When a devotee becomes greedy for Krishna by hearing about different ecstatic emotions displayed by a parikar participating in Krishna's braj pastimes, the devotee thinks, let this spiritual emotion also bloom in my heart. Jis tarah se Sudama ji aur Shri Ram Sakha seva kar rahe hain, mere hriday mein bhi is prakar ki bhavnaye jagrit hon, kaash main bhi is tarah ki seva kar sakun। जिस तरह से भक्ति ठाकुर एक भजन में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कब मैं भी राधा कुंड के तट में रहकर श्री रूप मंजरी की तरह सेवा कर पाऊंगा, श्रीमती राधाणी की सेवा कर पाऊंगा। तो भक्ति ठाकुर इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं लोभ। जिस तरह से श्री रूप मंजरी सेवा कर रहे हैं उस तरह से मैं कब सेवा कर पाऊंगा, और इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी प्रार्थना को क्या कहा जाता है, लालसामयी प्रार्थना, लालसा युक्त प्रार्थना कहा जाता है। तो यहां पर बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है उसको दूध की बड़ी इच्छा हो रही है। विश्वनाथ जी ठाकुर ने उदाहरण दिया है, वो दूध चाहता है, दूध पीना चाहता है, उसकी दूध पीने की बड़ी प्रबल इच्छा है, और दूध के द्वारा बनाए गए जो अलग नाना प्रकार के व्यंजन है उसको भी प्राप्त करना चाहता है, जैसे रसगुल्ला है, मक्खन है, घी है, नाना प्रकार की मिष्टियां, संदेश वगैरह वगैरह उसकी इच्छा है। लेकिन सबसे पहले उसको जानना होगा कि दूध कैसे प्राप्त किया जाए। दूध तो पीना चाहता है लेकिन सबसे पहले जानना होगा कि दूध कैसे पिया जाए, मिला जाए, और उसके लिए उसको एक ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जिससे जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है। वो जानता है कि इससे अगर मैं बात करूंगा तो वो मुझे बता सकता है कि कैसे दूध मुझे मिल सकता है, और साथ में दूध प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गाय खरीदनी पड़ेगी और गाय की सेवा मुझे करनी पड़ेगी। जब मैं गाय की सेवा करूंगा ठीक ठीक तो मुझे वो दूध देगी। कहने का मतलब है दूसरे शब्दों में, बिना मार्गदर्शन के हम लोग इस विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि रागानुगा साधन भजन में आगे बढ़ने के लिए हमको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, उन वैष्णवों की जिनके पास पहले से लोभ है। मान लीजिए दो लखपति व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं करोड़पति व्यक्ति के बारे में, जैसे कि भगवान गीता में कह रहे हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा भोदयंता परस्परम कथयंत शमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, है ना। मेरे भक्त आपस में एक दूसरे को बोध करा के आनंदकार सास्वादन करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उनको और ज्यादा क्या लाभ मिलेगा। जब वो लखपति जो है किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाएंगे, उसका सानिध्य प्राप्त करेंगे लोभी व्यक्ति का, तब उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा कि लखपति से करोड़पति व्यक्ति कैसे बना जाए। इसी तरह से वो दूध प्राप्त करने के लिए और गाय की सेवा कैसे की जानी चाहिए, उसके लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। और जितना अधिक भक्त जो है श्रवण कीर्तन के माध्यम से पवित्र होता जाएगा, उसकी अनुभूति बढ़ती जाएगी। जिस तरह से जब दवाई लगाई जाती है आंखों में तो क्या होता है, बीमारी दूर हो जाती है, उसी तरह से जो हमारी अज्ञानता है वो दूर हो जाती है श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। कृष्णम स्वर्णम जनम चास्य प्रेष्ठम निजम समीहतम तत्त काष्ठ कथा रतश्चासव कुरियार वसम ब्रजे सदा। तो ये चैतन्य चरितामृत से लिया गया है, इसी लोभ के बारे में बताया गया है। डिवोटी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा विद इन हिमसेल्फ एंड वन शुड चूज अ वेरी डियर डिवोटी हु इज सर्विटर ऑफ कृष्णा एंड वृंदावन। वन शुड कॉन्स्टेंटली एंगेज इन टॉपिक्स अबाउट दैट सर्विटर एंड हिज लविंग रिलेशनशिप टू कृष्णा एंड वन शुड लिव इन वृंदावन। हाउएवर इफ वन इज फिजिकली, यहां पर एक मिस्टेक हो गया, however if one is physically unable to go to Vrindavan, ठीक है, वैसे इन्होंने काफी मेहनत करनी पड़ी इनको, प्रशांत रोगो तो इसमें कई बार थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, तो प्लीज क्षमा करिए उसके लिए। if one is physically unable to go to Vrindavan, he should mentally live there। ये किसने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को, जब वो शांतिपुर आ गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो महाप्रभु ने कहा कि जाओ वापस घर, एक ही छलांग एक ही कदम से आप समुद्र पार नहीं कर सकते, घर में जाओ और वहां पर सांसारिक व्यक्ति की तरह रहो और अंतकरण से राधा कृष्ण का स्मरण करो। ये यहां पर बता रहे, तो कोई फिजिकली नहीं रह सकता है तो उसको मेंटली रहना चाहिए, क्योंकि विश्व के हर कोने में भक्त हो सकते हैं और हर भक्तों को शायद ये मौका ना मिले कि वो वृंदावन बार बार आ सके, वृंदावन में रह सके, तो मेंटली वहां पर रहना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है, डिवोटी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा विद इन हिमसेल्फ, हमेशा कृष्ण का चिंतन करना होगा और वृंदावन के उस नित्य परिकर के बारे में हमें निरंतर श्रवण करना होगा और वृंदावन के उस परिकर का कृष्ण से क्या संबंध है वो जानना होगा, यानी उस परिकर के बारे में बार बार सुनना और वो कैसे कृष्ण की सेवा करता है वृंदावन में, इसके लिए लालसा रहती है, लोभ रहता है। तो ये जो रुचि का जो स्तर है, रुचि और लोभी एक ही बात है, ये बहुत ही ऊंचा स्तर है, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, तो इसलिए पद्यावली में भी श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यत कुतो भी लभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृतिर न लभ्यते, है ना। तो श्री रूप गोस्वामी क्या करें, कृष्ण भक्ति रस जो है वो करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी नहीं प्राप्त हो सकता है, इसको प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम, लौल्य ही एक मूल्य है। ये लौल्य शब्द है, इसका अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, इसलिए प्रभुपाल को दो शब्दों का उपयोग करना पड़ा, इंटेंस ग्रीड। अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है लौल्य का, क्योंकि लौल्य शब्द में ही बहुत लौल्य है। ये कई संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं वो अपने आप में ही पूरा पूर्ण होता है, और लौल्य शब्द में इतना लौल्य है। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं लोभ साधु संगे हरि कथा। श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर कहते हैं जो उसको वास्तव में लोभ होगा, अगर वो वस्त्र भी पहन रहा होगा, अगर वो धोती भी पहन रहा होगा, उसको पता चलता है कि हरि कथा हो रही है, वो धोती पहनना भी छोड़ देगा और वो भागेगा हरि कथा सुनने। ये लोभ का एक लक्षण, लोभ साधु संगे हरि कथा। तो इस प्रकार जो पहला श्लोक है वो बता रहा है कि नित्य परिकर का चिंतन करना चाहिए जो वृंदावन में है, और ये जो ये वाला श्लोक है इससे बताया जा रहा है कि कैसे उस वृंदावन के भक्त का स्मरण करना चाहिए और कैसे उस प्रकार प्रेममयी सेवा में लगना चाहिए। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र तद्भावा लिप्सु न कार्य व्रज लोका अनुसरता। तो यहां बताया जा रहा है कि उन्नत वैष्णव को क्या करना चाहिए जो कि राग मार्ग से प्रेरित है, उसको एक विशेष परिकर के प्रति, उसके विशेष परिकर के कार्यकलापों के प्रति क्या करना चाहिए, अनुगत्य होना पड़ेगा, और बाहरी रूप से ही शुड एग्जीक्यूट सर्विस एक्सटर्नली। बाहरी रूप से वो क्या करता है, सभी विधि विधानों का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, और अंतर्ग रूप से जो उसका दत्त भाव लिप्सु न कार्य, यानी कि अपने जो अनुभव के अनुसार, साक्षात्कार के अनुसार वो अंतर्ग रूप से सेवा करता है, यानी कि बाहर से भी वो करता है और वो अंदर से भी करता है। अभी आगे पता चल जाएगा कैसे, ये कैसे एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का साधक रूपेण का मतलब है, साधक रूपेण का अर्थ यहां बताया गया है साधक की तरह वो रहता है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से शिल रूप गोस्वामी शिल सनातन गोस्वामी और सारे जितने भी वृंदावन में गोस्वामी थे, षड गोस्वामी थे, जिस तरह से वो साधक के रूप में रहता, तो रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर वो चलेगा एक साधक के रूप में। तो बोलेंगे साधक के रूप में क्या करते थे रूप गोस्वामी, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो, है ना, संख्या पूर्वक क्या करते थे, नाम लेते थे, प्रार्थनाएं बोलते थे और संख्या पूर्वक प्रणाम भी करते थे, है ना। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी प्रत्येक दिन गिरिराज शिला को दंडवत करते थे 1000 बार, 2000 वैष्णवों को दंडवत करते थे संख्या पूर्वक। षड गोस्वामी तो थे वृंदावन के, हालांकि वो वृंदावन में भजन कर रहे थे लेकिन साथ में वो गोष्ठानंदी भी थे, वृंदावन में रहकर भी वो गोष्ठानंदी थे, क्योंकि वो वृंदावन में रहकर क्या कर रहे थे, ग्रंथों की रचना कर रहे थे, मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे, शिव विग्रह की स्थापना कर रहे थे। हमारे वर्तमान वैष्णव भी यही कर रहे हैं। तो यहां पर ये लिखा है सेवक साधक रूपेण, सेवक साधक रूपेण। तो ये षड गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद राइट्स अ डिवोटी हू इज एक्चुअली एडवांस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हू कॉन्स्टेंटली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस शुड नॉट मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इवन दो ही हैज अटेन्ड परफेक्शन। द आइडिया इज दैट ही शुड ऑलवेज कंटिन्यू टू एक्ट एज अ नियोफाइट डिवोटी एज लॉन्ग एज हिज मेटीरियल बॉडी इज देयर। एक्टिविटीज इन डिवोशनल सर्विस under regulative principle must be followed even by the pure devotee। आप समझ रहे इस बात को, जब सेवक यहां पर जब लिखा है एक्सटर्नली लिखा है तो इसका अर्थ यह है कि शुद्ध भक्त जो उस स्तर पर पहुंच चुका है, रागन हुआ सदन भजन कर रहा है, लेकिन भारी रूप से उसको कैसे रहना चाहिए, एक कनिष्ठ भक्त की तरह रहना चाहिए सभी नियमों का पालन करते हुए। इसलिए आपने देखा होगा प्रभुपाद को, हमारे गुरु महाराज और भी कई वर्तमान जो वैष्णव लोग हैं जो भक्ति के उच्च धरातल पर पहुंचने पर भी बाहर कैसे रहते हैं, एक सामान्य भक्त की तरह रहते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद नेक्टर डिवोशन में क्या बता रहे हैं, इसी श्लोक को समझाते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं कि वन शुड ऑलवेज कंटिन्यू टू एक्ट एज अ नियोफाइट डिवोटी एज लॉन्ग एज मटेरियल बॉडी इज देयर। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि अगर कोई उन्नत है या राग मार्ग में है तो सारे अष्ट सात्विक भाव को हमेशा दिखाता रहे, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी ने आदेश दिया है कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। और नहीं क्यों करना चाहिए वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। और अंतरंग रूप से इंटरनली कैसे बताया है, पहला है साधक रूपेण बताया है श्लोक में, और अगला शब्द क्या है सिद्ध रूपेण। सिद्ध रूपेण का मतलब यह है कि अंतरंग रूप से वो अपने सिद्ध रूप के ऊपर वो ध्यान लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी की तरह सेवा करना चाहता है, जिसका वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी ने ब्रज विलास स्तर में किया है, तो वो फिर क्या करेगा, अंतरंग रूप से ऐसे लीलाओं के ऊपर वो ध्यान लगाएगा, उसका स्मरण करेगा। लीलाओं का स्मरण तभी हो सकता है नियमित रूप से जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, पूर्ण रूपेण पवित्र होती है। अशुद्ध चेतना से लीलाओं का स्मरण करना भी चाहेंगे तो लंबे समय तक नहीं कर पाते। स्मरण वास्तव में किया नहीं जाता है, स्मरण होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखो ही जीवादो स्वयं एव स्फूर्ति अलहा। स्वयं एव स्फूर्ति हदा, जैसे ही वो हरिनाम लेगा लीलाओं की स्फूर्ति होगी उसको। तो इस प्रकार यहां पे लिखा है और आगे बता रहे, श्रवणो कीर्तनादिनी वैदी भक्ति उदितानी तु यन यगानी चन्यत्र गेयानी मनसी भी। तो विद्वान आचार्य क्या बोलते बताए गए हैं, विद्वान आचार्य क्या कहते हैं, जो वैदिक साधन भक्ति के जो 64 अंग हैं वो सारे 64 भक्ति अंग जो है राग मार्ग में भी होते हैं। लेकिन केवल क्या होता है, राग मार्ग में राग रहता है श्रवण कीर्तन के समय। तो श्रवण कीर्तन जब करेगा, श्रवण कीर्तन का कार्य चलता रहेगा, लेकिन क्या श्रवण करेगा, उन परिकरों के बारे में श्रवण करेगा, उन लीलाओं के बारे में श्रवण करेगा जिनके कारण वो प्रेरित है, जिन परिकरों के कारण वो प्रेरित है स्वाभाविक रूप से, तो उनके बारे में वो श्रवण कीर्तन करेगा, फोकस रहेगा, क्योंकि उसको अगर वो सिद्धि प्राप्त करनी है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करनी है उस नित्य परिकर की तरह, तो उन्हीं के बारे में वो सुनेगा, उन्हीं लीलाओं के बारे में श्रवण करेगा, उन्हीं का वो कीर्तन करेगा अंतरंग रूप से। तो इस प्रकार ही बताएगा। अब आगे बता रहे हैं, रागानुगा भक्ति भी जो है दो प्रकार की है, पहला है कामानुगा और दूसरा है संबंधानुगा। ये जो भी हमने लिया है भक्ति रसाम सिंधु में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमने उसको केवल एक्सट्रैक्ट किया है ताकि हम लोग उस पर विशेष ध्यान दे सके। कामानुगा रागात्मिका, रागात्मिका शब्द क्या है सबसे पहले समझ अच्छी तरह से। रागात्मिका उन नित्य परिकरों को कहते हैं जो वृंदावन में नित्य सेवा करते हैं, यानी कि नित्य सिद्ध जीव, नित्य परिकर, नित्य सिद्ध जीव वो होते हैं जिनके ऊपर कभी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, मुझे अब तक याद नहीं है वो समय, ऐसा कोई समय नहीं था, प्रभुपाद कहते हैं, कि जब मैं कृष्ण को भूला हूं। तो नित्य सिद्ध परिकर का पहला लक्षण यह है, वो कभी कृष्ण को भूलते नहीं है, माया का प्रभाव उनके ऊपर कभी नहीं पड़ सकता है। तो प्रभुपाद 1967 में श्री कृष्ण पंडित को लिखा, जो छिप्पीवाड़ा बंदर के वो थे, इंचार्ज थे, वहां के अध्यक्ष थे, उनको लिखा प्रभुपाद ने चिट्ठी में कि माया मुझे छू नहीं सकती है, मैं माया से भयभीत नहीं हूं। लेकिन प्रभुपाद उस समय हार्ट अटैक हो गया था 1967 में, न्यूयॉर्क में थे। तो प्रभुपाद ने कहा, लेकिन मुझे चिंता है इस आंदोलन की, मुझे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो आप प्रार्थना करिए राधा दामोदर से वृंदावन में। तो इस प्रकार यहां पर बताया जा रहा है, जो रागात्मी का मत है, रागात्मी का मतलब जो है जैसे कि जो वृंदावन के परिकर है, नित्य परिकर, नित्य सिद्ध परिकर जो है। और दूसरे हैं, एक तो है वृंदावन की गोपियां या फिर द्वारका की रानियां, तो इन सबको कामानुगा कहा गया है, समझ रहे, कामानुगा कहा गया। और दूसरा है रागानुगा भक्ति का दूसरा भाग है संबंधानुगा। तो संबंधानुगा जो है वो उन परिकरों का आश्रय लेते हैं जो कि संबंधात्मिका का है, समझने का प्रयास करिए। यानी कि माधुर्य रस को छोड़कर जो अन्य रसों में स्थित है वृंदावन में, उन परिकरों को संबंधात्मिका भक्त कहा गया है। जैसे कि कौन, माता यशोदा, नंद महाराज, सुबल सखा, श्रीधाम सखा, है कि नहीं, रक्तक, चित्रक, पत्रक, ये सब क्या है, नित्य परिकर है। तो इनका जो संबंध है कृष्ण के साथ क्या है, ये रागात्मिका भक्त है। लेकिन रागात्मिक भक्त में, रागात्मिका भक्ति में इनका विशेष जो विशेष संबंध क्या है, संबंध आत्मिका भक्त कहा जाता है, इनको संबंध आत्मिका भक्त कहा जाता है। और जो माधुरी रस में स्थित है उनको क्या कहा जाता है, कामात्मिका भक्त कहा जाता है। तो कामात्मिका भक्त के अनुगत होकर उनके बारे में जो श्रवण करते हैं तो उनको कामानुगा कहा जाता है, और संबंधात्मिका परिक्रमों के बारे में जानुगत होकर उनके बारे में श्रवण किया जाता है तो उनको संबंधानुगा भक्त कहा जाता है। तो ये रागानुगा साधना, रागानुगा भक्ति के ये दो डिविजन बताए गए, पहला क्या है कामानुगा और दूसरा क्या है संबंधानुगा। कामानुगा कौन से भक्त कहलाया जाता है, जो कि माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, और संबंधानुगा कौन है, जो माधुर्य रस के अलावा और अन्य रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। तो ये दो डिविजन है। और अब कामानुगा भक्ति के बारे में और बताया जा रहा है, नेक्टर डिवोशन ने कामानुगा साधन भक्ति के बारे में बताया है पेज नंबर 127। तो इसके दो विभाग हैं, पहला विभाग है कामानुगम में संभोग इच्छामयी, और दूसरा है तत्तद भाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी वो गोपियां हैं जो कृष्ण के साथ सीधा संबंध रखना चाहती हैं, सीधा संबंध रखते हैं। और तत्तद भाव इच्छात्मिका वो परिकर है या वो मंजरियां हैं जो श्रीमती राधारानी के माध्यम से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो हमारा जो लाइन है, हमारे जो गुरु परंपरा में आचार्य हैं या श्री रूप गोस्वामी के जो अनुगत हैं, जैसे कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और फिर उसके बाद क्या नाम है उनका, भक्ति विनोद ठाकुर, तो जितने भी आचार्य हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर, इन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया, ये सब क्या है, मंजरियां हैं। तो ये सब जितने भी जो राधारानी की सेवा में लगते हैं मंजरियों के रूप में, मंजरियों की उम्र क्या है, छोटी होती है, वो भी गोपियां ही हैं, है ना, लेकिन क्या है कि उनकी उम्र छोटी होने के कारण उनको मंजरी कहा जाता है। उनकी उम्र 12.5 साल या 13 साल तक होती है अधिक से अधिक, और गोपियों की उम्र जो है वो बड़ी होती है, 14 साल या 14 साल से ज्यादा होती है। और ये गोपियों के अनुगत्य होकर गोपियों की सहायता करती है राधारानी की सेवा करने के लिए मंजरियां, जैसे श्री रूप मंजरी जो है ललिता सखी की चीफ असिस्टेंट है, और जितने भी हमारे आचार्य हैं वो उनको रूपानुग इसलिए कहा जाता है, ये अगले प्रश्न का भी उत्तर इसी में मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो रूप मंजरी के अनुगत्य होकर राधारानी की सेवा करते हैं। अब समझ रहे, तो वो सीधे कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, श्रीमती राधारानी के जो उनके जो नित्य सेवा में लगे हुए हैं, जिस तरह से रूप मंजरी हैं, उनके अनुगत्य होकर वो सेवा करना चाहते हैं। उनको कहते हैं तत्तद भाव इच्छात्मिका, तत्तद भाव इच्छात्मिका, स्ट्राइविंग नॉट टू मीट विद कृष्णा डायरेक्टली बट टू असिस्ट अ सुप्रीम हीरोइन श्रीमती राधारानी एंड डायरेक्टली एक्सपीरियंस हर लविंग मूड थ्रू सर्विस एंड एप्रिसिएशन। मंजरियों की विशेषता यह है कि राधारानी में जो भी भाव प्रकट होता है वो तत्काल ही मंजरियों में प्रकट हो जाता है, भले मंजरियां जो है राधारानी के निकट हो या ना हो, हो सकता है राधारानी सेवा कुंज में हो और वो जो मंजरी है कहीं और हो, बरसाना में हो, लेकिन राधारानी में जो भी भाव प्रकट हो जाएगा होगा वो तत्काल ही मंजरियों में प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा लाइन है वो ये है तत्तद भाव इच्छात्मिका, जो विशेष रूप से माधुर्य रस में स्थित है वो इस लाइन में होते हैं। और कामन का साधन भक्ति की यहां पर योग्यता बताई गई है, यानी कि स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए माधुर्य रस में। और प्रभुपाल लिखते हैं कि यह सेवा प्रारंभ होती है बाहरी रूप से। हम कैसे प्रारंभ करते हैं सेवा? राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करके और कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करके गोपियों के साथ। लेकिन अभी नहीं, हमने क्या बताया इसका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? लोभ, ठीक है। और यहां पर बता रहे हैं एलिजिबिलिटी मेल्स। तो कई बार यह भ्रम हो जाता है कि ये गोपी भाव है, मंजरी भाव है, ये तो हो सकता है केवल स्त्रियों के लिए है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। सिंस लविंग कृष्ण द कंजुगल मूड एंटेल्स फेमिनिन सेंटीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ डिवोटी, वन मे हैव द इंप्रेशन दैट ओनली फीमेल्स कैन प्रॉपरली एस्पायर फॉर इट। टू डिस्पेल दिस मिसकंसेप्शन एंड एस्टैब्लिश दैट अवर ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप विद कृष्णा हैज नथिंग टू डू विद द मटेरियल बॉडी, ये शरीर से कोई लेना देना नहीं है, देह से, भौतिक देह से। श्री रूप गोस्वामी ने दंडकारिणी के ऋषियों के बारे में वर्णन किया है, वो सब के सब पुरुष थे, लेकिन जब वो भगवान श्री राम को देखा, देयर कंजुगल लव फॉर कृष्णा ब्लॉसम्ड, दे टुक देयर नेक्स्ट बर्थ अ डॉटर ऑफ गोपीज एंड रिसीव्ड लॉर्ड कृष्णा डायरेक्ट एसोसिएशन। और आगे और भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं। दो प्रकार के माधुर्य प्रेम होते हैं, एक होता पराकिया भाव और एक होता है स्वकिया। पराकिया होता है जब जो वृंदावन के गोपियों के अनुगत्य होते हैं, और इस तरह से कोई गोलोक वृंदावन में जाता है और वहां पर राधा कृष्ण की लीला में भाग लेता। स्वकिया वो होते हैं जो कि कृष्ण के जो महिषियां हैं द्वारका में, वहां पर स्थान प्राप्त करते हैं, जहां पे भक्त भी जाकर उसी तरह से रानियों की तरह कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण के पटरानी बनना चाहते हैं, उसको कहते हैं स्वकिया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर हम देंगे, हुआ रूपानुगास, ये स्पष्ट है या इसमें भी कुछ आप क्लेरिफिकेशन चाहते हैं? तो रूप गोस्वामी के अनुगत्य जो है, रूपानुगत किसको कहते हैं? हम कहते हैं हम रूपानु गौड़िया वैष्णव है, हम रूपानु, प्रभुपाद ने कई बार बोला है ना, वी आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स रूप गोस्वामी, वी आर रूपानुगास। तो इसका अर्थ यहां बताएगा, तो जो श्री रूप गोस्वामी के इंस्ट्रक्शन को, उपदेश को पालन कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, वो क्या है? रूपानुगत है, सरल सा अर्थ है। जैसे कि एक ग्रंथ है, इसका नाम है श्री उपदेशामृत, तो उपदेशामृत में उपदेश दिए गए हैं श्री रूप गोस्वामी के द्वारा। एक साधक के लिए भी दिया गया है, एक सिद्ध रूपेण के लिए भी दिया है, साधक रूपेण के लिए भी दिया है, सिद्ध रूपेण के लिए भी दिया है उपदेशामृत में, तो साधक रूपेण के लिए भी दिया हुआ है। तो इन जो आदेशों का जो पालन करता है, जो रूप गोस्वामी ने हमें दिया है, वो सब रूपानु कहलाते हैं। और इनका मूड क्या रहता है? तत्त्व भाव इच्छात्मिका। हमारे आचार्य अधिकांश जो हमारी परंपरा में है वो क्या है? रूपानुग है। लेकिन स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ये रूपानुग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूप गोस्वामी के अनुगत्य नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर की सेवा करते हैं। स्वरूप दामोदर ललिता सखी है और रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, तो स्वरूप दामोदर कैसे फिर रूपानुग होंगे? वो रागात्मिका है, असुर है। और इसी तरह से रामानंद राय, रामानंद राय कौन है? विशाखा सखी है। हाँ, तो विशाखा सखी की कौन है चीफ असिस्टेंट? विलास मंजरी, जीव गोस्वामी। तो इस प्रकार जो जो रामानंद राय है, रामानंद राय वो रूपानुग नहीं है, लेकिन विलास मंजरी जो है वो रूपानुग है। तो यहां पर बताया राधा रानी जो है उनकी पांच प्रकार की सखियां होती है, ये उज्जवल नीलमणि में दिया है, श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है पांच प्रकार की सखियां। पहले सखी, फिर नित्य सखी, फिर प्राण सखी, फिर प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। तो आठ जो गोपियां हैं वो परम प्रेष्ठ सखी की कैटेगरी में आती है। और प्राण सखी दो है, कौन? रूप मंजरी और रति मंजरी। और जो माधुर्य रस में नहीं है उनको समधात्मिका भक्त कहा जाता है, हालांकि वो भी रागात्मिका भक्त है, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं। रूपानुग जो है वो रागानुग है, लेकिन जो संबंधानुगा है वो रूपानुग नहीं है। आप समझे बात को आखिरी लाइन को, क्योंकि संबंधानुगा कौन है जो अन्य रसों में स्थित है? माता यशोदा वो रूपानुग नहीं है। आप समझे बात को, नंद महाराज वो रूपानुग नहीं है लेकिन वो संबंधात्मी का भक्त है, और उनकी तरह अगर कोई सेवा करना चाहता है माता यशोदा की तरह तो उनको संबंधानुगा भक्त कहा जाएगा। ये ठीक है स्पष्ट। और श्री रूप मंत्री जो है वो ललता सखी की चीफ असिस्टेंट। ये सब बातें हम इसलिए बताना चाह रहे हैं यहां पर इस सभा में, क्योंकि कई बार जब इस प्रकार का जो प्रचार होने लगता है तो हमें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसका हम प्रचार नहीं करते हैं भक्त बनाने के लिए। अब ये थोड़ा आप जाएंगे कि आप भक्त बनाने के लिए सब बातें बताएंगे, ये भक्त बनाने के लिए हम नहीं सीख रहे हैं, लेकिन जो भक्त बन के नहीं भक्त भक्ति कर पा रहे हैं उनके लिए शिक्षा है। जो भक्त बनकर जो है आप सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं उनके लिए श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा है। लेकिन एक व्यक्ति को नया भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद की जो छोटी किताबें हैं, जो बेसिक फिलॉसफी है, वही पर्याप्त है और वही हमें देना चाहिए, क्योंकि इन बातों को सुनाने से कोई भक्त नहीं बनेगा, लोग जो है कंफ्यूज हो जाए। आगे बढ़िए, तीसरा प्रश्न। हाँ, ये चार्ट है, ये पिछली बार भी हमने दिया था, आपको याद है कि जब साधना कैंप हुआ था हमारा झिंझोली में तो हमने एक चार्ट आपको दिया था, हो सकता है कि आपने चार्ट कहीं घुमा दिया हो तो दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष। और इसमें हमने चार्ट में बहुत अच्छी तरह से डिवीजन बनाए हैं, साधन भक्ति के दो डिवीजन बनाए हैं, वैदी साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। वैदी भक्ति कोई इस क्रम को पालन करता है, श्रद्धा से शुरू करता है और प्रेम तक पहुंचता है, तो वैदी भक्ति के द्वारा जो प्रेम प्राप्त होता है वो कहां ले जाएगा, हमने बताया कहां ले जाएगा, वैदी साधन भक्ति के द्वारा जो प्रेम प्राप्त होता है वो कहां ले जाएगा, वैकुंठ ले जाएगा। और वैदी भक्ति में अगर रुचि प्राप्त हो रही है और वैकुंठ के पार्षदों से उसका आकर्षण जागृत होता है, वो देखना चाहता है नारद जी कैसे सेवा करते हैं, जय विजय कैसे सेवा करते हैं, एक परिकर के प्रति आकर्षण जागृत होगा, लोभ जागृत होगा, उसमें भी लोभ जागृत होता है लेकिन वैकुंठ के पार्षदों के प्रति। ये वैकुंठ जाने का रास्ता बता रहे हैं, वैकुंठ जाओ या गोलोक जाओ, ये सर जो स्टेप्स हैं सारे एक ही हैं, अंतर है भाव में। तो जो वैकुंठ के भाव में है वो वैकुंठ के पार्षदों से आकर्षित होते हैं, जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि कैसे सेवा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की कैसे सेवा करते हैं, वैकुंठ में क्या क्या सेवाएं करते हैं, कहां कहां वो जाते हैं, क्या क्या प्रार्थनाएं वो करते हैं, सब जानना चाहते हैं उनके बारे में, और उनकी तरह वो सेवा करना चाहते हैं, नारद जी की तरह सेवा करना चाहते हैं। तो इस तरह से फिर वो आगे बढ़ते हैं, आसक्ति के स्टेज पर पहुंचते हैं, फिर भाव के स्टेज पर पहुंचते हैं और प्रेम की धरातल पर पहुंचते हैं। और रागानुगा मार्ग में अगर कोई प्रवेश करता है तो वो प्रवेश करता है लोभ की अवस्था से, जैसे हम पहले बता चुके हैं रुचि। तो रुचि के स्टेज में क्या होता है, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका आकर्षण वैकुंठ के प्रति है या ब्रज के प्रति है। तो अगर ब्रज के प्रति आकर्षण अगर होगा आपका तो ब्रज के परिकरों से आकर्षण होगा। जब भी आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे बार बार जो है आप ब्रज के परिकरों से आकर्षित होंगे, बार बार उसी अध्याय को खोलेंगे आप। आप टेंथ कैंटो पढ़ेंगे, कोई है कि बालीला पढ़ रहे हो, पढ़ ही रहा होगा सिर्फ, वो केवल बालीला ही पढ़ रहा होगा, है कि नहीं? जैसे पुष्टि मार्गी है, वल्लभ संप्रदाय के भक्त हैं, वो बाल रूप की ज्यादा पूजा करते हैं, तो वो बार बार गोकुल में जो लीलाएं हैं या नंदगांव की जो लीलाएं हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के बारे में सुनना चाहते हैं, वहां के परिकरों के बारे में सुनना चाहते हैं, बाल रूप में कृष्ण ने सिखाओ, कृष्ण की सेवा सिखाओ ने किस तरह से की। तो इस प्रकार वो जागृत करते हैं अपने भाव को, तो रुचि के स्तर पर यह प्रारंभ होता है और इस तरह से आसक्ति, फिर भाव और प्रेम। और जैसे हमने बताया कि माधुरी रस जो है उसके दो डिवीजन है, कामानुगा और संबंधानुगा। कामानुगा के भी दो डिवीजन है, संभोग इच्छामय और तत्तद् भाव इच्छामय। और प्रेम और आगे बढ़ता है, आगे दिखाइए। यह है विशेष योगदान शिल रूप गोस्वामी का। इससे पहले इस प्रकार का वर्णन किसी भी आचार्य ने कभी नहीं किया। पहली बार श्री रूप गोस्वामी ने किया, जो कि उनको मार्गदर्शन मिला श्री चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु से उनको मार्गदर्शन मिला। क्या मार्गदर्शन मिला? प्रभु ज्ञान। श्री रूप गोस्वामी को मार्गदर्शन मिला। किसे मार्गदर्शन मिला? चैतन्य महाप्रभु से। कहां पे मिला? प्रयाग में। 10 दिन के लिए लगातार चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, और उन्हीं शिक्षाओं को लेकर श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की ग्रंथ की रचना की, और ये सारी सीढ़ियों के बारे में बताया कि प्रेम के आगे भी कुछ है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, और ये भी बताया कि महाभाव गोपियों में भी होता है, लेकिन राधारानी में और जो है कुछ होता है। क्या होता है? उनका जो महाभाव है, वो जो महाभाव श्रीमती राधारानी के पास है, वो किसी के पास नहीं है, है ना? महाभाव के 2 डिवीजन है, रूढ़ महाभाव और आदिरूढ़ महाभाव। आदिरूढ़ महाभाव के भी 3 डिवीजन है, मोदन, मोहन, मादनाख्य। मादनाख्य महाभाव, श्रीमती राधारानी का महाभाव क्या है? मादनाख्य महाभाव, जो समझाने से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कृष्ण भी नहीं समझ पाते इसको। तो कृष्ण जब इस महाभाव को समझना चाहते हैं, वो श्रीमती राधारानी के भाव का आश्रय लेते हैं या उनकी भाव की चोरी करते हैं, लेकिन चोरी करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए श्रीमती राधारानी जो है, उनका जब कुछ चुरा लिया जाता है, मान लीजिए आपका कुछ चुरा लिया जाए, आप करोड़पति व्यक्ति हैं और आपका सारा धन लूट लेता हूं मैं, और आपको पता है कि मेरे पास वो धन है, तो आप मेरे पीछे पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे, भिखारी की तरह? तो इसी तरह से श्रीमती राधारानी जो है वो गदाधर पंडित के रूप में आते हैं और हमेशा महाप्रभु के पीछे लगे रहते हैं। गदाधर पंडित नवद्वीप में भी, जगन्नाथपुरी में भी, और महाप्रभु का प्रारंभ से प्रशिक्षण कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। गदाधर पंडित नवद्वीप से ही प्रशिक्षण दे रहे हैं, नहीं तो अनिवार्य पंडित है। गौरांग रूप तो धारण कर लिया, लेकिन फिर भी गदाधर पंडित से शिक्षा लेनी है। अब प्रश्न ये उठता है, कोई पूछ सकता है कि गदाधर पंडित के पास अगर वो महाभाव है नहीं जो कि चुरा लिया गया है, तो वो फिर महाप्रभु को सिखा कैसे सकते हैं? ये प्रश्न उठ सकता है कि नहीं? मान लीजिए आपने मेरी डायरी चुरा ली और मैंने उस डायरी में बहुत गहरी गहरी बातें लिखी हैं, आपको तो मिल गई वो डायरी, आपने डायरी चोरी कर ली, लेकिन क्या डायरी चोरी करने से आपको समझ में आ जाएगा? तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने डायरी तो चोरी कर ली, आप रख लो, लेकिन समझना हो तो मुझसे पूछ लेना। तो इसी तरह से गदाधर पंडित जो है जगन्नाथपुरी में प्रत्येक दिन टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम सुनाते थे। इस कारण से चैतन्य महाप्रभु का भाव का पूरा पोषण हुआ जगन्नाथपुरी में। तो ये हमें बात को समझना है, इस बात को। और ये जो है महाभाव, ये यहां बताया गया कि अलग अलग रसों में प्रेम कहां तक पहुंचता है। तो यहां पर बताया गया है कि माधुरी रस जो है वो महाभाव तक पहुंचता है, वात्सल्य रस जो है अनुराग तक पहुंचता है, सखी रस भी अनुराग तक पहुंच जाता है, दास्य रस राग तक पहुंचता है, शांत रस जो है वो प्रेम तक पहुंच जाता है। ठीक है, सुबल सखा में कई बार देखे जाते हैं महाभाव के लक्षण, एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन सामान्यतया सखी रस में अनुराग तक ही जाता है, दास्य रस में राग तक जाता है, शांत रस में केवल प्रेम तक जाता है। प्रहलाद महाराज के हृदय में प्रेम है, लेकिन प्रेम की आगे की बातें नहीं है। तो इस तरह से इन बातों को हम समझ सकते हैं, और इस तरह से ये चार्ट पूरा, अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस चार्ट में। हाँ जी, हाँ जी,
तो ये ऊपर है कि
हाँ, वो चार्ट में डायग्राम में मिस्टेक है। तो ये जो कमान हुआ है बेसिकली यहाँ पर रुचि के साथ दिखाना चाहिए, ठीक है ना आप? वो सिर्फ डायग्राम में मिस्टेक है, ये बेसिकली जो कमान हुआ है ये रुचि के स्टेज से डिवीजन दिखाया जाना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, नहीं जब आप लोभ के स्टेट में पहुंचेंगे तो आपको अपने इंक्लिनेशन का पता चलेगा, विच मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। मेंटल सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर भी बताया जाएगा कि लोभ जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है दो सोर्स से। लोभ का दो सोर्स है, विश्वनाथ जी ठाकुर ने राग मर्दमा चंद्रिका में लिखा है, एक है कृष्ण की कृपा और दूसरा है शुद्ध भक्तों की कृपा। बिना शुद्ध भक्तों की कृपा के, कृष्ण की कृपा के वो लोभ प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो गुरु से वो आपको पूछना होगा कि मेरा इंक्लिनेशन जो है इस प्रकार है ब्रज के परिकरों के प्रति, तो गुरु आपको इस बात को कंफर्म करेंगे कि हाँ तुम्हारा जो भाव है वो ब्रज का है, और उनके मार्गदर्शन में फिर रागानों का साधना जो है आप प्रारंभ कर सकते हैं। एवरी स्टेज हैज टू बी कंफर्म बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। तो वैधि साधन भक्ति से हम लोग रागानों का साधन भक्ति की तरफ बढ़ते हैं रुचि के स्टेज पर, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। हाँ, इफ दे आर दे हैव द वैकुंठ भाव दे विल गो इन दैट प्रोसेस, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेट देम गो टू वैकुंठ। That is eternal residence for them. No, even in that also, at the stage of Ruchi, they will have to actually hear and glorify the pastimes of the Lord of Vaikuntha and hear about those servitors who are actually in the mood of Vaikuntha, like Narada Muni, as I explained. So endeavor is there also. ऑटोमेटिक कुछ नहीं है वहां पर भी, वहां पर भी एंडेवर होगा। दैट इज डिफरेंट, दैट इज व्हेन वी आर दैट स्टेज। इनका प्रश्न ये है कि बेसिकली चेंजिंग ऑफ रसा, Prabhupada said that is on a liberated platform, not now. Because love is not static, Prabhupada kehte hain. Conversation mein hai ye. So rasa can be changed, for Vaikuntha you can go to Golo. That is possible, but not now. No problem. See, automatic, nothing is automatic. Whatever natural inclination you have within the heart of the living entity, that will manifest. Automatic कुछ नहीं है, जैसे लकड़ी में अग्नि है, लेकिन अग्नि निकालने के लिए आपको प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है, मंत्र के उच्चारण के द्वारा, है कि नहीं? प्रॉपर प्रोसेस से जो है वो अग्नि प्रकट होती है। बीज से फल निकालना है तो प्रोसेस है उसके लिए, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह श्रवण कीर्तन के द्वारा और वैष्णव की कृपा के द्वारा वो प्रोसेस जो है मैनिफेस्ट होता है।
तो भाई अगर नाम में अगर राधिका राम राम अगर वो नहीं ले चल रहा मीनिंग और विलीन कर रहा है रघुपति राम, तो फिर वहां उतना मजा आ रहा है, ही एंड अप इन अयोध्या।
नो प्रॉब्लम,
तो एंड अप मींस
लेट हिम गो टू अयोध्या
और वेदर ही विल देयर लेट हिम विल एस्पायर फॉर।
नहीं नहीं, एंड अप इन अयोध्या मींस एक्चुअली क्या है, बिकॉज दैट ही हैज गॉट इंक्लिनेशन फॉर अयोध्या। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मुरारी गुप्त, मुरारी गुप्त वॉज ऑल्सो चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, बट ही हैड इंक्लिनेशन फॉर लॉर्ड रामचंद्र बिकॉज ही वॉज हनुमान। एक्चुअली स्पीकिंग, वेन वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, द एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज देयर विद इन हरे कृष्ण महामंत्र, एंटायर गोलोक वृंदावन इज देयर इन योर बीट बैग, है कि नहीं? ऑल द वैकुंठ प्लैनेट्स आर देयर इन योर बीट बैग, द्वारका इज देयर इन योर बीट बैग, अयोध्या इज देयर इन योर बीट बैग। हरे कृष्ण महामंत्र जो है हर प्रकार की इच्छाएं पूरी करेगा, हर प्रकार का रस प्रदान कर सकता है। अगर कोई माधुरी रस में है, कोई रूपानुग है, उसका लाभ यह है सबसे बड़ा कि उसके पास अन्य रस भी हैं। ये क्लियर बता दें, इसमें ये जो है फिलिंग हम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, जो रूपानुग हैं उनके पास अन्य रस भी होते हैं, जो माधुर्य रस है उनके पास अन्य रस भी होते हैं। ठीक है, दैट इज अ मिस्टेक, देन दैट्स अ मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी क्लियर विद द फिलॉसफी, दे शुड बी क्लियर विद द सिद्धांत, सिद्धांत मस्ट बी एक्सप्लेन टू देम। उनको सिद्धांत बताना पड़ेगा कि यहां पर जो राम दिया गया है उसका गूढ़ अर्थ क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनका आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण भगवान श्री राम के प्रति है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें अपराध लगेगा। क्योंकि तत्व में कोई भेद नहीं है, तत्व में इनमें कोई भेद नहीं है, भेद है रस में। इसलिए उसको जो करना है करने दो, उसमें आप बाधा मत डालो, लेकिन साथ में आप कंसेप्ट बता दो। जैसे महाप्रभु ने मुरारी को बता दिया कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ इनकार्नेशन, बट फिर भी जाके जब उन्होंने अपने ईष्ट को देखा, भगवान राम को दर्शन, भगवान राम के दर्शन किए, राम दरबार का दर्शन किया, तो उनसे रहा नहीं गया, पूरी रात सो नहीं पाए वो। उन्होंने वहां के महाप्रभु से क्षमा मांगी कि महाप्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपके आगे का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता हूं, साथ में मैं अपने ईष्ट को भी नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं। महाप्रभु का चिंता मत करो, तुम रामदास हो, तुम हनुमान है कि नहीं। तो जनरली क्या होता है, कोई रस चेंज नहीं करता है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं उस कन्वर्सेशन में, जैसे माता यशोदा आनंद महाराज वो कभी चेंज नहीं करते, लेकिन अगर चेंज करना चाहें तो इट इज पॉसिबल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद सही, तो जैसे कि नंद महाराज जो है वैकुंठ में नंद है, श्रीराम सखा जो है वैकुंठ में गरुड़ जी हैं, वो वैकुंठ में भी है गोलोक में भी है, दैट इज पॉसिबल। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में किसी ने बोला कि भक्ति सिद्धांत महाराज तो रूपानुग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने तो यहां पर ऐश्वर्य जो है प्रकट किया है, राधा कृष्ण की भी सेवा ऐश्वर्य भाव में हो रही है। तो फिर उत्तर दिया गया कि ही इज इन ऑल्सो इन वैकुंठा, ही इज इन गोलोक एज वेल एज इन वैकुंठा, ऑफकोर्स ही इज फ्रॉम गोलोक वृंदावन। तो कहने का अर्थ यह है कि इट इज पॉसिबल, देयर इट इज पॉसिबल। हाँ बताइए, हाँ जी,
अगर कोई प्राकृतिक बात बोलना शुरू कर दे कि मैं, मतलब उनको भी ऐसा आभास हो सकता है कि उनका किसी परिकर के प्रति रुचि है, या वो ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे ये लीला ज्यादा स्मरण हो गया या ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने बताया कि वो कृष्णा को पर्टिकुलर पास्टाइम के बारे में पढ़ेंगे, तो
हाँ इसका उत्तर बड़ा सिंपल है। भजन रहस्य में भक्त ठाकुर इसको समझाते हैं, और इसके लिए हमें भक्ति ठाकुर की टीका पढ़नी पड़ेगी जो कि उन्होंने दिया है शिक्षाष्टकम के ऊपर, और साथ में भजन रहस्य। इसमें चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम है जिसमें 8 श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक जो है भक्ति की एक सीढ़ी है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो पहला श्लोक है ये श्रद्धा का स्टेज है। उसके बाद नामनाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ये है भजन क्रिया साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। तीसरा श्लोक जो है त्रिनाद भी सुने चेन तरोर पे सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, यानी कि इसके बाद अगला जो स्टेज है, ना धनाम ना जनम ना सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित की त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भक्त ठाकुर समझा रहे हैं कि अगर कोई लोक के स्टेज पर पहुंच गया है तो ये लक्षण जागृत होना चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु की त्वयि। क्या मैं ये लक्षण जागृत हो गए हैं? और ये तो आगे की बात है, इससे पहले हम ये परखेंगे अपने आप को, क्या परखेंगे कि मेरे अंदर ये गुण आ गए हैं क्या, त्रिनादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, और क्या आखिर में कीर्तनीय सदा हरि। आपको तो मैंने बहुत कम देखा है जब करते हुए, आप में लोग कैसे जागृत हो गया, आपकी 16 माला पूरी हो गई। तो कीर्तनीय सदा हरि का मतलब है ये जो स्टेज है इस स्टेज को कहते हैं निष्ठा। ये आगे हम समझाने वाले हैं क्योंकि आपने प्रश्न पहले ही पूछ लिया, इसलिए हम उसका उत्तर अभी दे रहे हैं आपको कि रुचि के स्टेज में पहुंचने से पहले निष्ठा के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। और त्रिनाद अभी सुने चेन तरोर अपनी सहिष्णु का अर्थ है कि वो उसकी नम्रता और उसकी सहनशीलता इसमें स्थिरता आ जाती है और इस कारण से वो हमेशा कीर्तन कर पाता है, दूसरों को सदा मान देता है, मान की इच्छा नहीं रखता है वो, तो खुद अपने आप को परखे, फिर हम बोल सकते हैं कि अब लोग इस लोक के स्टेज पर पहुंच गए हैं। और लोग के स्टेज पर पहुंचने के लिए शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए और कृष्ण की कृपा चाहिए। हाँ जी, श्री राम सखा, हाँ है, हाँ स्वरूप तो ही, क्या दिक्कत क्या है, वैकुंठ और गोलोक दोनों का आनंद ले रहे हैं। नाम स्वरूप बदल सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं लव इज नॉट स्टैटिक, जैसे कि तालाब है या कुंड है वहां पर पानी जो है एक जगह रह जाता है, तो ये जो प्रेम है वो नदी की तरह है, नदी की धारा की तरह बहता रहता है और वहां जाकर कोई रस बदलना चाहते तो बदल सकता है, पॉसिबल क्यों नहीं। नहीं, प्रभुपाद ने कन्वर्सेशन स्पष्ट बताया, धाम में चेंज कर सकते हैं, देयर यू कैन चेंज रस्सा, प्रभुपाद के कन्वर्सेशन में आपको दिखा देंगे 1976 लॉस एंजलिस में प्रभुपाद ने कन्वर्सेशन में बताया है। चाहे तो उनकी इच्छा है, ना चाहे तो वो रहे जहां पे रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्य तौर से ऐसा नहीं करते हैं, जैसे माता यशोदा नहीं चाहेंगे कि बैकुंठ में जाए वो, क्योंकि वहां पर वात्सल्य रस है ही नहीं बैकुंठ में, तो इसलिए उनकी कोई इच्छा नहीं वहां जाने की, इसलिए वो आनंद ले रहे हैं कृष्ण के साथ वहीं पर गोलोक वृंदावन में। लेकिन अगर इच्छा है तो वो जा सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं वो एक्सपैंड करना चाहें तो कर सकते हैं, हाँ वो कई कर सकते हैं। पहले स्थाई भाव जागृत करते हैं, सबसे पहले हम सबसे पहले स्थाई भाव जागृत करते हैं। स्थाई भाव का मतलब कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ एक्सटेसी है कि नहीं, जो हमारा जो नेचुरल जो इमोशन है उसको पहले सबसे पहले हम लोग रिवाइव करते हैं, उसके बाद आगे की बातें आती हैं। पहले स्थाई भाव जागृत करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ भाव लिखा ना, यहाँ पर स्टेज भाव का स्टेज आ सकते हैं भाव, तो वो सबसे पहले जो भाव जागृत होगा उसको हम कहते हैं स्थाई भाव। ठीक है, और कुछ ठीक है प्रेम किशोर रूप। हाँ, बेसिकली आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं। हम श्री संप्रदाय में क्यों नहीं बैठे जाके, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, बैकुंठ जाते हैं वहां पर, और हम लोग गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं गोलोक वृंदावन जाने के लिए। तो अधिकांश जो इस भाव में अधिकांश सामान्यतया जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ेंगे वो ब्रज में ही जाना चाहेंगे, जैसे कि दाएं तरफ जो बताया गया है रुचि के बाद ब्रज की ओर वो बढ़ना चाहेंगे जो इस गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं, सामान्यतः 99.9%। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हमारे वैष्णव संप्रदाय में कई ऐसे भक्त हुए हैं जो सख्य रस में भी थे, हृदय चैतन्य, गौरीदास पंडित, मुरारी गुप्त, ये सब हमारे संप्रदाय में थे, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि केवल एक माधुर्य रस ही होता है हमारे संप्रदाय में, ऐसा नहीं है। माधुर रस वालों भक्तों की प्रधानता है, माधुर रस में स्थित जो भक्त है उनकी प्रधानता है, लेकिन और अन्य रसों में भी भक्त स्थिर है। ऐसे कई उदाहरण है हमारे संप्रदाय में, जैसे बंसीदास बाबा जी महाराज वो वात्सल्य रस में थे, मध्वाचार्य तो माधुर्य रस में, नहीं वो वायु के अवतार हैं लेकिन मूलतः ब्रज लीला में माधवी गोपी हैं। वो अभी हम टच नहीं कर रहे क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग है। हाँ जी, हाँ सब रूपानुगा है, हाँ सब रूपानुगा है। सनातन गोस्वामी भी अपने आप को रूपानुगा मानते हैं। लबक मंजरी साधक के रूप में और बड़े भाई के रूप में आते हैं गौर लीला में। और कुछ बस आगे बढ़े, नेक्स्ट, व्हाट इज बाबा जी वेश एंड सिद्ध प्रणाली। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और काफी समय से इसके ऊपर चर्चा की जा रही है नए लोगों के द्वारा। पुराने लोग तो चर्चा नहीं कर रहे हैं आजकल, इसकी चर्चा नए लोग कर रहे हैं जिनकी दीक्षा भी नहीं हुई है। पुराने लोग इतने व्यस्त हैं सेवा में, उनके पास समय नहीं है इसके लिए चर्चा करने के लिए। तो इसलिए क्या है कि कई बार हमारे ही समाज में उलझन पैदा हो जाता है और हमारी भटक जाते हैं। तो यह है बाबा जी वेश और सिद्ध प्रणाली के बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे। अब पहले इसलिए हमने वैदिक साधन क्या है, रागानुगा साधन क्या है, इसको ठीक ठीक समझने का प्रयास किया है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा जी वेश क्या है और सिद्ध प्रणाली है क्या वास्तव में। भेद धारण सिस्टम ऑफ बाबा जी वेश, फ्रॉम व्हेन द सिस्टम ऑफ भेद धारण फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ बाबा जी वेश इन यूज। ऑन मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन वी कैन सी दैट दिस सिस्टम वाज नॉट करंट एट द टाइम ऑफ सिक्स गोस्वामीज, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड सो ऑन, बिकॉज दीज पर्सनैलिटीज वेर इंस्टीट्यूटली परमहंसास। नेचुरली श्रीला सनातन गोस्वामी टेकिंग एन ओल्ड धोती फ्रॉम तपन मिश्र टोर इट अप एंड वोर इट अप एज बहिर्वेश एंड डोर कोपिन लॉइन क्लॉथ वोर बाय परमहंसा। देयर नो मेंशन एट ऑल ऑफ गिविंग सिद्ध प्रणाली, द प्रोसेस इन विच द स्पिरिचुअल मास्टर गिव्स अ डिटेल ऑफ स्पिरिचुअल फॉर्म इंट्रिंसिक मूड एक्सेट्रा इन दिस कनेक्शन। चेतन चरितामृत आप पढ़ेंगे, सनातन गोस्वामी जब बनारस गए तो वहां तपन मिश्र से भी मिले, चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रुके थे चैतन्य महाप्रभु, और सनातन गोस्वामी के आते ही महाप्रभु को जब पता चला तो महाप्रभु बाहर आए सनातन गोस्वामी से मिले, और की दाढ़ी भी बढ़ गई थी, बाल भी बढ़ गए थे। जब स्नान करके लौटे तो फिर उनको तपन मिश्र से वस्त्र प्राप्त हुए, उन्होंने वस्त्र लिए और उसी से उन्होंने बहिर्वाश और कोपिन बनाकर उन्होंने ये वेश धारण किया। लेकिन वहां कहीं लिखा है कि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से सिद्ध प्रणाली की चर्चा की हो। द वर्ड भेग इज प्रॉपरली अंडरस्टूड टू बी, क्षमा करिए इससे पहले ये है, इन वन वे कहां पे थे हम लोग, दिस ड्रेस ऑफ रिनंसिएशन वॉज अडॉप्टेड सिंपली टू इंडिकेट अ फर्म डेडिकेशन टू भजन। Similarly, one should understand the case to be same in regard of other Goswamis. In one way, this bheg dharan included in category of the bhikshu, mendicant, ashram or sannyas, because the paramahansas don't have any permanent and defined dress. They are beyond rules and regulation, and the distinguished marks of the ashrams such as sannyas. Since they are always carried away by bhagat prem, the regulation and prohibitions of scriptures such as Vedas are no impetus for such paramahansas. तो परमहंसों के लिए बेसिकली कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो बेसिकली वो याचक की तरह रहते हैं, तो ये वेश धारण करते हैं। However, those personalities who are not in paramahansa stage accept vaishnava sannyas according to sattvas vaishnava smriti such as shatkriya sar deepika. According to same regulation, they wear a white outer cloth and door kopin. This is for firm dedication to sadhan bhajan and is called bheg dharan. Bheg dharan का मतलब वेश का धारण करना, डोर को भी पहनना और इस प्रकार बहिर्वाश पहनना। तो ये बेसिकली एक वैराग का लक्षण है साधन भजन के लिए। द वर्ड भेग इज अ करप्टेड फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड भेष. संस्कृत ठीक करना पड़ेगा. श्री भक्तिवर ठाकुर हैज रिटन इन एसे एंटाइटल भेग धारण. द वर्ड भेग इज प्रॉपरली अंडरस्टूड मीन द आश्रम ऑफ भिक्षु मेंडिकेंट्स. द नेम ऑफ सन्यास आश्रम इज भिक्षु आश्रम. सन्यासीज कैन नेवर एसोसिएट विद वुमेन इन हिज लाइफ. दे विल सस्टेन देयर लाइव्स बाय द ऑक्यूपेशन बेगिंग. हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, इन विच आश्रम दोज वैष्णव एक्सेप्टेड भेग सिचुएटेड. Our study of instructions and shastras of Mahaprabhu established that the detached Vaishnavas are in the Bhikshu ashram. The association of Vaishnavas is completely forbidden by them, for them. So then they are situated in the Sannyas ashram. Sign of Sannyas is Kopin. If they have accepted door Kopin or Bahirvash, then they are definitely included in the Sannyas ashram. अगर उन्होंने बहिर्वास पहना है और डोर कोपिन धारण किया है तो ये इंगित कर रहा है कि वो सन्यास आश्रम में ही स्थित है. प्रोसेस फॉर डेवलपिंग रति फॉर कृष्णा फर्स्ट ऑफ ऑल विथ फेथ इन सब्जेक्ट रिलेटेड कृष्णा. आफ्टर दैट वन प्रोसेस टू साधु संघ. ये बेसिकली वही बताया है, आदो श्रद्धा तथा साधु संघ अथवा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति एंड सो ऑन. एट स्टेज व्हेन द रति फॉर कृष्णा राइजेस इन द हार्ट अ धर्मा कॉल्ड विरक्ति टेक शेल्टर ऑफ अ वैष्णव. यानी क्योंकि जब भाव की स्थिति पर पहुंच जाता है तो एक विरक्ति जागृत होती है. एट दैट स्टेज वैष्णव साधक बिकम्स कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम द गृहस्थ आश्रम. ही देन वेयर्स कोपिन टू मिनिमाइज हिज पर्सनल नेसेसिटीज एंड मेंटेन्स लाइफ बाय बेगिंग. दिस इज कॉल्ड वैष्णव भेग. दोज वर सिंपल एंड फ्री फ्रॉम डुप्लीसिटी एंड वी एक्सेप्ट भेग फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग कृष्ण भजन आर वर्थी टू रिसीव द प्रेयर्स ऑफ द होल वर्ल्ड. दिस टाइप एक्सेप्टेंस ऑफ भेग इज ऑफ टू टाइप्स. सम साधक आफ्टर रिसीविंग डिटैचमेंट बॉन्ड ऑफ भाव एक्सेप्ट भेष फ्रॉम अ वर्ती गुरु एंड सम हैव पुट डोर कोपिन एंड भैरवाश देमसेल्फ. तो एक तो वो गुरु से भेष मिलता है उनको जब वो भाव की अवस्था में पहुंचते हैं एज साइन ऑफ डिटैचमेंट, या फिर स्वयं ही वो क्या करते हैं डोर कोपिन और भैरवाश धारण करते हैं. हाउएवर इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दीज डेज द भेग आश्रम इज बिकमिंग एक्सट्रीमली करप्टेड. The consideration of eligibility has completely disappeared. Some people who want to wear bheg, although they are unqualified, have their head shaven, put on door kopin, and accept bheg whimsically. In present time, some perversions have come in the system of sannyas. What are they? Some household or vaishnav become babaji's, having shaven their heads and put on kopin. What can be more injurious than this? Their action is opposed to Shastra and to the interest of society. If they are actually detached from the materialistic life, then they may accept bheg in genuine renunciation. Varnashram dharma ke aadhar par. Chale ho chup chap. Devi Varnashram dharma ke aadhar par. Otherwise, they will disgrace Vaishnava dress and in the next life, they will also have to taste the fruit of doing so. This is a terrible and disastrous custom among Babaji's of keeping maid servants in the ashrams. ऐसे कई बाबा जी देखे गए हैं वृंदावन में जो साथ में दासियां रखते हैं. एक गोविंद कुंड में एक बाबा जी रहते हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे. अब उन्होंने दासी रखी है तो जब ब्रजवासियों ने विरोध किया तो उन्होंने फिर क्या पत किया, जो दासी थी उन्होंने सिंदूर लगा लिया. और बाद में पता चला, जब पुलिस को पता चला, उन्हें पुलिस वाला ने यही कहा कि ये तो विवाहित है तो आप बेकार इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं. तो इस प्रकार चल रहा है ब्रज में, कई जगह पे चल रहा है. सो दिस इज टेरिबल एंड डिस्ट्रेसिंग कस्टम अमंग बाबाजी फॉर कीपिंग मेड सर्विस इन आश्रम. इन सम आश्रम बाबाजी में कीप इवन हिज ओन वाइफ फ्रॉम हिज प्रीवियस आश्रम एंड इन द फॉर्म ऑफ मेड सर्वेंट. दीज पीपल एसोसिएट विद वुमेन ऑन द प्रोटेस्ट ऑफ सर्विस टू गॉड एंड सर्विस टू साधुस. बाबाजीज वर एक्चुअली रिनाउंस्ड कंप्लीटली रिजेक्ट द ग्रीड फॉर वुमेन वेल्थ ईटेबल्स एंड सो ऑन. Nowadays, common people are losing faith in Vaishnavas. ये Vaishnavas हैं, ठीक है? Vaishnavas ही लिखा हुआ है. Because they see that these defects are spreading among supposedly renounced people. The essence of the matter is that those who accept the symbol of renunciation without having developed the genuine detachment which arises from rati or bhav are a disturbance in society and a disgrace to Vaishnava dharma. Their downfall and defamation of Vaishnava dharma are both guaranteed when they accepted bheg before they are qualified to do so. क्योंकि मन में उनके विषयों का चिंतन रहता है और इस प्रकार वो निर्जन भजन करने जाते हैं और वहां कंचन कामनी की चिंता करते हैं हरिनाम लेते हुए। अभी हमारे एक भक्त ने देखा, एक प्रभु जी हमारे हैं, वो अभी राधाकुंड गए थे, उन्होंने देखा कि एक बाबा जी वहां खड़े थे दुकान के पास, और उन्होंने माला बाहर निकाली और जेब से उन्होंने निकाला, क्या निकाला, जेब या जो भी था उनके हाथ में, गुटका था, उसको क्या कहते हैं, खेनी कहते हैं, खेनी को हाथ में रखा, ऐसे ऐसे किया और फिर मुंह में डाल लिए, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने माला में हाथ डाला, फिर हरे कृष्णा में चल रहा है सांसा। तो बाबा जी इस, हाँ यहाँ पे दे आर डॉन फॉर डिफेमेशन ऑफ वैष्णव धर्म आर बोथ गारंटीड व्हेन दे एक्सेप्टेड भे बिफोर दे आर क्वालिफाइड टू डू सो आफ्टर श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर एंड बलदेव विद्याभूषण अ डार्क एज बिगैन इन श्री चैतन्य महाप्रभुस गौड़िया संप्रदाय ड्यूरिंग विद द करंट ऑफ श्री रूपानुगा भक्ति बिकम समवॉट इम्पेयर्ड एट दैट टाइम सेवंथ गोस्वामी श्री सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर एंड श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपीयर्ड दीज टू पर्सनैलिटीज brought a re-evolutionary transformation in Gaudiya Vaishnava Sampradaya and restored its lost dignity. To these two Mahapurushas and their followers goes the entire credit for whatever diffusion of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Naam Sankirtan and Shuddha Bhakti has taken place among the learned and respectable sector of society, not only India but also throughout the world. They have established Gaudiya Vaishnava centers of Shuddha Bhakti everywhere. They have published literature of Shuddha Bhakti along with the magazines and journals in all the major languages of the world. And this in a very short time, they have revolutionized the Gaudiya Vaishnava society. Siddha Pranali. Siddha Pranali is very much misused nowadays in Braj Mandal, Gaur Mandal and even Kshetra Mandal, Jagannath Puri. Some people are abused and even driven from their homes when their wives pass away. जब पत्नी का देहांत हो जाता है तो घर से बाहर निकाल लेते हैं ऐसे लोगों को, और क्या होता है, although they are bereft of par tattva gyan and unaware of vedic bhakti sadhan, they have their head shaven in the middle of night, put on coping and quickly take siddha pranali. These days can be obtained very easily by giving a half a rupee. Just before giving mantra, a financial contract takes place. These people think there can be no auspices for sadhaks until they acquire Siddha Pranali. तो यही प्रचार कर रहे हैं आजकल सब, ये जो अब सिद्धांत वाले हैं वे बोल रहे हैं कि आपको Siddha Pranali नहीं मिल रही है इस कौन में, तो आप सब हमारे पास आ जाओ सबको छोड़ के। और बेचारे जो सिद्धांतों में परिपक्व नहीं है, वैसे सिद्धांत को नहीं जानते हैं ठीक तरह से, वो बेचारे जा भी रहे हैं, है ना। रागानुगा भक्तास, क्षमा करिए, इससे पहले देयर नो नेसेसिटी फॉर वेरी साधन तत्व ज्ञान अनर्थ निवृत्ति रागानुगा भक्ति Bhakta should obtain Siddha Pranali before he goes through Anartha Nivritti. In that way, he can avoid getting caught in the inconvenience of Vaidhi Bhakti. अगर पहले से आपको Siddha Pranali मिल जाए, तो Vaidhi Bhakti के नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा, मंगल आरती में आने की जरूरत नहीं है, चार नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको Siddha Pranali मिल गई। यानी कि आप बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, द कंसेप्शन ऑफ दिस पीपल इज एग्जैक्टली लाइक थिंकिंग दैट अ फ्रूट विल ग्रो फ्रॉम अ लीफ बिफोर द अपीयरेंस ऑफ अ फ्लावर, है कि नहीं। अभी बीज बोया और तुरंत ही आपको फल चाहिए, अभी उसमें से पत्ते निकले नहीं लेकिन आप फल की आशा कर रहे हैं, ऐसा होता है। सुशील रूप गोस्वामी डिफाइंड द फॉलोइंग सीक्वेंस विच वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू एंटर द रियल्म ऑफ भक्ति। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगत अथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचि तथा अथा आसक्ति ततो भावा तथा प्रेमाभ्युधंजति साधकानाम अयम प्रेमना प्रादुर्भवेर भवेत क्रमः। तो इसमें जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रादुर्भवेर भवेत क्रमः, क्रमशः ही हमारा विकास होगा। श्रद्धा से लेकर प्रेम का जो स्तर है, जो अलग स्तर बताए हैं, उसमें क्रमशः ही विकास होगा, छलांग मार के नहीं होगा। जैसे कि संसार में भी कोई अगर भौतिक पद प्राप्त करता है या पद प्राप्त करना चाहता है, उसमें भी क्रमशः विकास होता है। आप पीएचडी करना चाहते हैं, बचपन करने से ही आप जन्म लेती है, आपको पीएचडी डिग्री नहीं मिलती है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। दुनिया भर के सारे केमिस्ट मिलकर एक डॉक्टर नहीं बन जाते, है कि नहीं। हालांकि दवाइयों की जानकारी वो रखते हैं, फिर भी उनको डॉक्टर नहीं कहा जाता है। इस संसार में कुछ भी परफेक्शन प्राप्त करने के लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का ही विकृत रूप है। बच्चा जन्म लेते ही चलने नहीं लगता है, रेंगता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं नेक्टर डिवोशन लेक्चर सीरीज में, एक व्यक्ति है रात को निकला टॉर्च लाइट लेके और ढूंढने गया कि सूरज कहाँ है, सूरज कहाँ है, सूरज कहाँ है, उसको सूरज नहीं मिल रहा था। लेकिन सूरज जैसे 5 बजे तो सूरज निकल आया। बोलते देखो मैंने पूरी रात टॉर्च लेके घूम रहा था, देखो अब निकल आया सूरज। तो सूरज को जब निकलना है वो तभी निकलेगा, रात के 12 बजे सूरज नहीं निकलेगा, आप चाहेंगे भी तो नहीं निकलेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भौतिक जगत में किसी भी अवस्था में पहुंचने के लिए या किसी ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए क्रमशः विकास होता है, तो प्रेम की स्थिति में पहुंचने के लिए विष्णु रूप गोस्वामी बताते हैं कि प्रेमणा प्रादुर्भवे प्रादुर्भावे भवेत क्रमा। इसी तरह से भागवत में बताया गया, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंति हित कर्ण रसायन कथा। जब हम भक्तों के संग में भगवान की लीला कथा सुनते हैं तो रसायन का कार्य करती है, टॉनिक का कार्य करती है। लेकिन साथ में भागवत में क्या बताया है, इसी श्लोक में क्या बताया है, तज्जोशना राशोपर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रम शति। हालांकि आपको रसायन की तरह लग रहा है लीला सुनना, लेकिन आप श्रद्धा से प्रेम के स्तर पर क्रमशः ही विकास कर पाएंगे। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रम शति। तो ये दो प्रमाण है, एक तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसाम शब्दों में दे रहे हैं और स्वयं श्रीमद भागवत इसका प्रमाण है। तो इन बातों का ध्यान रखना। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने पहले सबसे पहले शिक्षा किसको दी थी, सनातन गोस्वामी को दी थी। कहां पर दी थी, बनारस में। 2 महीने लगातार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इसकी शिक्षा दी थी। ये जो भक्ति के अलग अलग स्तर बताए गए हैं, कोनो भाग्य कोनो जीवे श्रद्धा यदि हो तबे से ही जीव साधु संग करो, साधु संग होते हुए श्रवण कीर्तन साधन भक्त हुए सर्वथा निवर्तन, अनर्थ निर्दिति होए भक्त निष्ठ हो, निष्ठ होते भक्त हुए आसक्ति प्रचुर, आसक्ति होते चित्ते जन्मे कृष्ण प्रीति अंकुर, सही भावक गाढ़ा होले हरे प्रेम नाम, सही प्रेम प्रयोजन सर्व सर्वधन धाम। तो इसमें भी यही लिखा है, सेम बात बताई गई है। तो इसी तरह से जीव जो है सबसे पहले श्रद्धा जागृत करता है और क्रमशः विकास करके वो प्रेम की अवस्था में पहुंचता है। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर वन हु ट्रांसग्रेसेस द सीक्वेंस टू एंटर इन द रियलम ऑफ भक्ति, दस दोस हु वांट टू एंटर इन द डोमेन वाइल नेग्लेक्टिंग द लिम्स ऑफ वैदिक भक्ति आर इन ऑल रिस्पेक्ट्स अनरिस्ट्रेन एंड आउटसाइड द कंक्लूजन ऑफ शास्त्र दे आर नो रिलेशन एट ऑल विद शुद्ध भक्ति। आश्चर्य क्या बताया हमने कि कोई अगर छलांग मारना चाहेगा तो क्या होगा, गिरेगा, है कि नहीं। जितनी सीढ़ियां हैं सब सीढ़ियों से आपको चढ़ के आना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि आप नीचे लॉबी में खड़े हैं और एकदम से ऊपर आ जाएंगे, छलांग मारने का प्रयास करेंगे तो गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि हमें हर सीढ़ी से गुजरना पड़ेगा। श्री भक्तिराज ठाकुर ने यही बताया है, क्या बताया देखिए, विधि मार्ग रत्न जने स्वाधीन रत्न धने राग मार्गे कोरे न प्रवेश। बाय कंसीडरिंग द ग्रेडेशन ऑफ साध्य वस्तु वी फाइंड द प्रेम ऑफ श्रीमती राधारानी फॉर द क्रिस्ट इज अ क्रिस्ट ज्वेल। फ्रॉम श्री चैतन्य महाप्रभु इज एक्सप्लेन दैट साध्य फॉर द लिविंग एंटिटीज राधा दास से सर्विस टू श्रीमती राधारानी इम्ब्यूड विद पराकी भाव। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट साध्य वस्तु साधना इज नेसेसरी। साध्य वस्तु साधना बिना केह नहीं पाए, कृपा कोरी कहो राय पवर उपाय। The goal of life cannot be achieved unless one accepts the appropriate process. Now being merciful upon me, please explain that means by this goal can be achieved. तब रामानंद राय बता रहे हैं कि गोल कैसे अचीव किया जा सकता है। अब यहां पर रामानंद राय जो है बता रहे हैं कि अगर कोई रागानुगा सदन साधना भजन करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन। जब कोई लोक के स्तर पर पहुंच जाता है और राग मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो यह सब उसको करना पड़ेगा। राधा कृष्ण लीला यही अति गुणतर, दास्य वात्सल आदि भावे ना होए गोचर। बड़ी सुंदर बात बताई रामानंद राय ने। रामानंद राय ने कहा कि राधा कृष्ण की लीला जो है अत्यंत गुणतर है और जो दास्य रस में है और जो सखे रस में है और वात्सल रस में है वो भी इनको नहीं समझ सकते हैं। हम दिल्ली के लोग समझ सकते हैं जो जब के समय सोते हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, रामानंद राय क्या कह रहे हैं। राधा कृष्ण लीला ये अति गुणतर, दासे वासलारी भावे ना होए गोचर सब एक सखी गुणे इहा अधिकार सखी होते होए ये लीला विस्तार। केवल गोपियों का ही अधिकार है इन दिव्य लीलाओं को समझने के लिए और उन्हीं से हम समझ सकते हैं। सखी बिना ये लीला पुष्ट नहीं हो सखी लीला विस्तार है सखी अस्वादाय और उन्हीं के हम लोग मार्गदर्शन से सहयोग से इन लीलाओं को समझ सकते हैं। इट इज देयर बिजनेस टू टेस्ट मेलोस। सखी बिना यही लीला अनिर नहीं गति सखी भावे ये तारे करे अनुगति राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य सही पाए सही साध्य पाए तैयार नहीं को पाए। तो यहां पर लिखा है इट इज देयर बिजनेस टू टेस्ट मेलोस। किनका? गोपियों का। वन के नॉट एंटर टू दिस पास टाइम विदाउट द हेल्प ऑफ द गोपीज। ओनली वन हु डज भजन द एक्सेसी ऑफ गोपीज फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप्स कैन एंगेज इन द सर्विस ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण द गुरु ऑफ वृंदावन। ओनली देन कैन वन अंडरस्टैंड द कंजुगल लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण। देयर इज नो अदर प्रोसीजर फॉर अंडरस्टैंडिंग। अते गोपी भाव करी अंगीकार रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण बिहार सिद्ध देह चित्ते करे ताहानी सेवा सखी भावे पाए राधा कृष्ण रचरण। सो वन शुड एक्सेप्ट द मूड्स ऑफ गोपीज इन द सर्विस इन सच ट्रांसेंडेंटल मूड। वन शुड ऑलवेज थिंक्स ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। आफ्टर मेडिटेशन ऑफ राधा एंड कृष्ण फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द इंटरनली कन्विंस्ड स्पिरिचुअल बॉडी वन अटेन्स द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लोटस फीट ऑफ राधा कृष्ण एज वन ऑफ द व्रज देवीज। तो गोपियों के अनुगत होकर अंतरंग रूप से बहुत लंबे समय तक जब राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाया जाता है उनका स्मरण किया जाता है अपने सिद्ध देह में तब जाके राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है जिस तरह से ब्रज की गोपियां करती हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब होगी? कब हम रामवार की शुरुआत कर सकते हैं? रुचि के स्तर पर। और रुचि के स्तर पर कब पहुंच सकते हैं? निष्ठा के स्तर पर जब तक पहुंच। और निष्ठा का मतलब क्या है? त्रिनादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अबानिना मानदेन कीर्तने सदाहरि। तो ये श्लोक हमें जो दूसरे सुनाना चाहिए और खुद भी इसको अंगीकार करना चाहिए। सेवक साधक रूपेण अच्छा करिए। इसके बाद है एसेंशियली द जिस्ट ऑफ द मैटर इज दैट द लव लेडन लीला ऑफ राधा कृष्ण सो कॉन्फिडेंशियल एंड सो फॉर मिस्टीरियस दैट इट इज इम्परसेप्टेबल इवन फॉर दोज इन द मूड्स ऑफ दास्य एंड वात्सल्य। Only the sakhis are eligible for this. Therefore, no one can attain the service of Srimati Radhika or the kunj seva of Sri Radha Krishna Yugal by sadhana without accepting the anugatya of the sakhis. That is, without being under their guidance. Thus, only meaning of attaining the supreme sadhya is meditation on the leelas of Radha Krishna throughout day and night by the internally conceived siddha deha in the mood of sakhis. For this reason, Srila Rupa Goswami has given the instruction in his Bhakti Rasam Sindhu in the section of the sadhan of Sri Raghunuga Bhakti. Srila Rupa Goswami has mentioned two types of sadhana in Raghunuga Bhakti Seva, which we have already mentioned. Sevak sadhak rupena siddha rupena chatrahi tad bhava lipsuna karya vraj lokas anusarataha. When there is lobh, greed for Ragatmika Bhakti, Raghunuga Bhakti is executed in two ways. जब लोभ जागृत होता है रागात्मिका भक्ति के लिए तो रागानुगा जो भजन है वो दो प्रकार से किया जाता है, साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण, एक्सटर्नली एंड इंटरनली, जो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। वन मस्ट रेंडर बॉडीली सर्विस विद साधक रूपेण फॉलोइंग द ग्रेट अथॉरिटीज रिजाइडिंग ब्रज एज श्रील रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी एंड ऑल्सो द आचार्यज इन अवर गुरु परंपरा। And with the Siddha Rupa, one must render Manasi Seva, following the Brajvasi such as Sri Rupa Manjari and others. That is internal. The meaning of the bhava was given in Chaitanya Charitamrita is in this way. Bhai antari har dvai to sadhan, bhai sadak deha kore shavana kirtan, mane nija siddha deha kori abhavan, ratri dina kore braje krishtena sevan. तो ये बात बताइए चैतन्य चरतामृत में कि रागानुगा भक्ति बाहर से की जाती है किस तरह से और अंदर से कैसे की जाती है। दस रागानुगा भक्ता साधका शुड इन ऑल रेस्पेक्ट प्रैक्टिस भाव संबंधी साधना सच एज श्रवण कीर्तन सर्विस टू तुलसी वेयरिंग तिलक ऑब्जर्विंग वोग बिगिनिंग एकादशी जन्माष्टमी एंड सो ऑन। फॉर ऑल दिस एक्टिविटी नरिश वंस ओन डिजायर्ड भाव Simultaneously, one must also render service to Sri Radha and Krishna Braj, meditating on one's Siddha Day in the heart. The body of a gopi which is suitable for rendering service to Radha and Govind is called Siddha Day. When the bhajan is complete, the jiva gives an inert material body and attains the body of a gopi corresponding to its inter-eternal intrinsic form. Narottamdas Thakur kehte hain, sadhana bhavi beja siddha deva paveta raga patheer yehi se upay. What the subject is constantly meditated upon at the time of performing sadhana, that same subject is prominent meditation at the time of death and it grows a chitta. सर इस बात मतलब जो आपने साधना के समय जिस आपने जिस के ऊपर अपना चित्त लगाया, जिस विषय वस्तु के आपने ऊपर आप चित्त लगाया, वही मृत्यु के समय आपका आपको स्मरण करे याद आएगा, यानी कि मृत्यु के समय उसी का स्मरण होगा। जीवन भर साधना के समय जिसका आपने जिस पर आप जिस विषय वस्तु के ऊपर आपने ध्यान लगाया उसी का ही स्मरण होगा जीवन के अंतकाल में। और ये भगवान गीता में कह रहे हैं यम वापी स्मरण भावम तम तम ए वै थी कौन तया, है ना। फिर क्या है यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम तम तम नहीं तम तम ए वै थी कौन तया सदा तद भाव भाविता, है ना। अंतकाल में जिसका आप ध्यान करेंगे, जो अपना साधना के समय आपने जिसका ध्यान लगाया था वही आपको प्राप्त होगा, वही भाव प्राप्त होगा। Now we should note that the description of Siddha Day that the Shastras and the Mahajan have given are for sadhas of a particular level. Where Siddha Day has mentioned, it has shown the context of Raganuga Bhakti. जब भी Siddha Day शब्द का उपयोग किया गया है भक्ति रसाम सिंधु में या अन्य शास्त्रों में, तो Raganuga Bhakti के context में बताया गया है। Especially such instructions are intended for those very fortunate sadhar in whose heart lobh, genuine greed to attain ragatmika bhakti has already arisen due to sanskar from this life and previous life. इसलिए विश्वनाथ जी ठाकुर बताते हैं दो प्रकार के लोभ, एक लोभ जो पिछले जन्म से आता है और एक जो लोभ है जो इस जन्म हमें प्राप्त होता है गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से। कहां पे थे, आगे कर दिया यहां पे। Here is further matters worthy consideration. It is one thing under the excellence of some particular rasa by the description given in Shastra. It is another thing altogether to have love for that rasa. When someone has love for a particular rasa, then the symptom of love will also be evident in sadhan. When love arises, Raganuga Bhakti sadhan begins from the stage of Ruchi. It will be understood. Aap dekhiye kya hota hai. Aur bhi lakshan bataya gaya hai jo Ruchi ke star par pahuncha hai. Ye dhyan se suniye. It will be understood that for नाम अपराध मतलब क्या है बता रहे हम, जो रुचि के स्टेज पर पहुंच गया है उसमें और क्या लक्षण है। ये तो आपने बता दिया कि रुचि के स्तर है तो उसको निष्ठा के स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन और क्या क्या लक्षण है बताया जा रहे हैं यहां पर। तो और लक्षण बता रहे हैं कि नाम अपराध, सेवा अपराध एंड वेरियस अदर अनर्थाज ऑफ सागर्स हैव मोस्ट पार्ट ऑलरेडी गॉन फार अवे, बहुत दूर जा चुके हैं आप इससे, नाम अपराध से, सेवा अपराध से और अनर्थों से दूर हो चुके हैं मोस्ट पार्ट। ही हैज ऑलरेडी कंट्रोल्ड द सिक्स अर्जेस मेंशन्ड बाय श्री रूप गोस्वामी इन उपदेशामृत फर्स्ट वर्स, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, है ना। फिर क्या है, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपी माम पृथ्वीम सशिष्या। यह है मध्यम अधिकारी, ये मध्यम अधिकारी भक्त का लक्षण है। वो सारे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है, श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो अगर कोई लोभ की अवस्था में पहुंच चुका है तो उसके पास ये लक्षण भी जागृत होने चाहिए। ये नहीं कि जब संडे फीस आता है या कोई फेस्टिवल आता है तो गप गप करके खा रहा है, वो उधर भाजन कर रहा है और बोलता है मेरे अंदर लोभ जागृत हो गया है। तो तथा अगर फिर फाइव स्टार रागानुगा भक्ति नहीं चलेगी, ये लक्षण जागृत होने चाहिए। और क्या बताया देखिए, साथ में ही इज वर्चुअली फ्री फ्रॉम सिक्स फॉल्ट्स, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यमश षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये छह प्रकार के अनर्थ उसमें नहीं होते हैं। और उसके बाद तीसरा श्लोक, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतोवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये छह प्रकार के जो अनुकूल हैं साधना के लिए, उसको भी वो अंगीकार कर चुका है। और तीन प्रकार के जो भक्त हैं उनके साथ वो ठीक ठीक व्यवहार करना जानता है। कौन है तीन प्रकार के भक्त? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम वैश्य। कनिष्ठ अधिकारी के ऊपर वो कृपा दिखाता है, उनको प्रशिक्षित करता है और मध्यम अधिकारी से मित्रता बनाता है और उत्तम वैश्यों को पहचान कर उत्तम वैश्यों का सानिध्य प्राप्त करता है, उनकी सेवा करता है, इस तरह से वो भी आगे बढ़ता है। तो भक्तिवर ठाकुर ने एक जगह बताया है, प्रश्न पूछा है उससे कि हु कैन रिकॉग्नाइज वैष्णव और सॉरी हु कैन सर्व द वैष्णव। तो भक्तिवर ठाकुर कहते हैं ओनली मध्यम अधिकारी कैन सर्व द वैष्णव। तो पूछेंगे फिर हमारा क्या, हम सब वैष्णव सेवा नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर हम कनिष्ठ अवस्था में हैं, हमें नहीं पता यहां कौन किस अवस्था में है, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां हम बताना चाह रहे हैं अगर हम कनिष्ठ अवस्था में हैं तो हमें वैष्णव सेवा में लगाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कनिष्ठ भक्त नहीं पहचान सकता है कि कौन वैष्णव है, उसको बताना पड़ता है कि वैष्णव आए उनकी सेवा करो, नहीं तो वो केवल माला लेके बैठा रहेगा और बोलेगा मैं निर्जन भजन कर रहा हूं, वो नहीं पहचान सकता है कि वैष्णव कौन है, उसको लगाना पड़ता है वैष्णव सेवा में। और मध्यम अधिकारी पहचान सकता है कि ये उत्तम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी नहीं पहचान सकता है। तो इस तरह से भक्तिवर ठाकुर बता रहे हैं। और आठवें श्लोक में बताया गया है, आठवां श्लोक पूरा क्या है, आठवें श्लोक का ये पंक्ति है, तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नए दखिलम इति उपदेश सारम। तो बताया है कि ब्रज में रहकर ऐसे साधक को चाहिए कि 24 घंटे वो ऐसे भक्त के जो राग मार्ग में है उसके अनुगत्य रहकर 24 घंटे दिन रात वो श्रवण कीर्तन करे। तो हमने जैसे पहले बताया था, अगर कोई ब्रज में फिजिकली नहीं रह सकता है तो मेंटली उसको वहां रहना पड़ेगा, अगर वो अमेरिका में भी रहता है तो मेंटली वो ब्रज में रहे और क्या करे, हमेशा श्रवण कीर्तन में लगा रहे। तो इस प्रकार ये सारे लक्षण जागृत होने चाहिए अगर लोभ की अवस्था में कोई है। हम ऐसे कौन कौन लोभ की अवस्था में, खुद ही डिसाइड करें। इन दिस स्टेज साधक गोज ऑन परफॉर्मिंग भजन, व्हेन ही क्रॉसेस द स्टेज ऑफ रुचि एंटर द स्टेज ऑफ आसक्ति देन अ सिंपलम ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड बाय श्री रूप गोस्वामी इन द वर्ड्स शांति अव्यर्थ कालोत्तम विल ऑब्जर्व हिम। और जब रुचि के स्टेज से आगे पहुंचता है, आसक्ति के स्टेज पर पहुंचता है, तो फिर भाव भक्ति का ऐसे भक्त को आभास होता है। ऐसे भक्त को क्या होता है? आभास होता है। और इसके बाद आगे क्या बताया, देखिए, साधक विल परफॉर्म भजन मेडिटेटिंग ऑन ए सिद्ध दे कब, इन द स्टेज आसक्ति असेंबलेंस और रति विच अराइज इन द स्टेज ऑफ भाव विल अपियर एंड ऑर्डर टू मेक दैट रति मैनिफेस्ट फुली द साधक विल परफॉर्म भजन मेडिटेटिंग ऑन ए सिद्ध दे when the rati abhas, ये रति है, when the rati abhas transforms into rati by the practice of bhajan, then the sadhak attains the factual experience of his swarup. This is called meditation. इसके बाद आपको बताएंगे सिद्ध देव और एक्सेप्टेंस ऑफ वैष्णव भेग, और तब जाके कोई वैष्णव भेग धारण करता है जिसको बाबाजी वेश कहते हैं, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज इस अवस्था में थे। सो देर आर परमहंसास, तो बाबा जी वेश को धारण करता है अगर, तो दे आर परमहंसास। लेकिन हो क्या रहा है कि नए नए जो है अभी जो जन्म लिए हैं वो अपने आप को बाबा जी बता रहे हैं और अब सिद्धांत भी प्रस्तुत कर रहे हैं साथ में। तो यहां बताया आसक्ति के स्तर पर क्या होता है, आपको अपने स्वरूप का आभास होता है। स्वरूप के 11 लक्षण होते हैं और वो क्या करता है, इन 11 लक्षणों के ऊपर जो है, 11 लक्षणों के ऊपर ध्यान लगाने का वो प्रयास करता है वैष्णव के अनुगत्य होकर, और इस तरह से भाव की अवस्था में वो सिद्ध देह प्राप्त करता है। सिद्ध देह प्राप्त करने पर वो वैष्णव भेद धारण करता है जिसको बाबाजी वेश कहते हैं। भक्तिवर ठाकुर ने इस तरह का बाबाजी वेश धारण किया, जगन्नाथ बाबाजी महाराज का ये बाबाजी वेश था, श्रील गौर किशोर बाबाजी महाराज का ये बाबाजी वेश था, और जो कि सन्यास आश्रम में भी संभव है यह आगे बताया जाएगा। इन एनी केस मेडिटेशन ऑन वंस सिद्ध दे डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ वंस गुरु, यहां पे भी गुरु की कृपा आवश्यक। गुरु और शिक्षा गुरु एस्टैब्लिश इन रस विचार एंड उन स्वरूप सिद्धि Siddha will indicate the details of sadhas perfected form. Otherwise, if the sadhak changes the order of the sequence described above, he cannot attain the perfection. On the contrary, his bhakti may be completely ruined and the conception of sampradaya will also be corrupted. We see this going on every day, everywhere nowadays. Some ignorant people say that there is no Siddha Pranali in Gaudiya line. This fictitious propaganda is erroneous in all respects. In the authentic literature written by Srila Gopal Bhatta Goswami entitled Shat Kriya Sar Deepika and Sanskar Deepika, which is a supplement to Hari Bhakti Vilas, there is an account of Tridandi Sanyas Sanskar. The original manuscript handwritten by Srila Gopal Bhatta Goswami is protected even today in the Royal Library of Jaipur. An old copy of the same literature is also kept by Goswamis of Sri Radharaman. Therefore, this literature is an authoritative evidence. According to Sanskar Deepika, Tridandi Sanyas Vesh is given among the Gaudiyas. In the Sanyas Sanskar, Dor Kopin, Bhairvash and the Sanyas Mantra for taking shelter of Gopi Bhav are also given. Ekadash Bhav, 11 aspects of Gopi Bhav, jisko Siddha Pranali kehte hain. Siddha Pranali ka matlab kya hai? Is Ekadash Bhav ke upar meditate karna. Simple as it is. Then is Samman, Vaib, Naam, Roop, Yuth, Vesh, Agya, Vas, Sheva, Parakhashta Vas and Palya, Dasi Bhav. Palya, yes, nahi hai, Palya. Is determined by the instruction of Sri Guru in accordance with the ruchi of sadhak, one's own samman, vayag, naam, roop, yut, vesh, agya, vas, seva, parakhashta vas and palya dasi bhav given by the Guru is called Siddha Pranali. Ye hai asli Siddha Pranali. As a sadhak goes on performing this type of sadhana, the perfection of sarup takes place along with the attainment of Shuddha Rati in his heart. Bhav ki avastha mein fir usko kya hota hai? Siddha Dev prapt ho jata hai. Srila Bhaktivinoda Thakur has described his Siddha Swarup in this way. Geetwala mein Bhaktivinoda Thakur ne apne Swarup ke baare mein is tarah se varnan kiya hai. My complexion is a light, a flash of lightning. My dress is bedecked with twinkling stars. My name is Kamal Manjari and I am eternally 12 and a half years old. My abode is Swananda Sukhad Kunj. My service is to supply camphor to Sri Yugal. I serve in the gun of Lalita and Sri Radha is my Yutheshwari. The beloved of Swamini, son of Nanda Maharaj, is the treasure of my life. I aspire to serve Sri Yugal like Rupa Manjari and others. I am confident that I will surely attain this service. This is my highest perfection. Oh, when will this maid servant attain complete forgetfulness of my past? So, this is the जब पहुंच जाता है कोई उस स्वरूप सिद्धि की अवस्था है 11 लक्षण जो है स्वरूप के पूर्णतः प्रकट हो जाते हैं. Water custom of accepting bhag is seen among Babaji is not a fifth ashram, rather it is a second form of the fourth ashram, namely the sannyas ashram. तो sannyas ashram में stages होते हैं. आप बोलेंगे कि फिर सन्यासी भी तो आपके संस्था में आप हर व्यक्ति थोड़ा भाग की अवस्था में जो सन्यास ले रहे हैं. लोग चैलेंज कर सकते हैं. तो सन्यास के भी स्टेज बताया गया है शास्त्रों में. पहला स्टेज है कुटीचक, दूसरा स्टेज है बहुदल, तीसरा स्टेज है परिव्रजक और चौथा स्टेज है परमहंस. तो जो परमहंस स्टेज है सन्यास का और जो बाबाजी वेश है दोनों में कोई अंतर नहीं. इसलिए सन्यासी को सन्यास आश्रम छोड़कर बाबाजी वेश धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. इसलिए हमारे संप्रदाय में किसी भी सन्यासी ने सन्यास आश्रम को छोड़कर बाबाजी वेश धारण नहीं किया. गृहस्थ आश्रम से बाबाजी वेश जरूर धारण किया होगा, जिस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर या श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, क्योंकि वो परमहंस की स्थिति में थे. कंक्लूजन, वॉटर कस्टम ऑफ एक्सेप्टिंग भेग इज सीन अमंग द बाबाजी इज नॉट अ फिफ्थ आश्रम, रादर इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द फोर्थ आश्रम, नेमली द संन्यास आश्रम. सिद्ध प्रणाली टाइम 10:30 हो गए, अब उसको यहां छोड़ देंगे तो सारा सस्पेंस रह जाएगा फिर. अच्छा सर, बहुत लंबा है, ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, लेकिन सिद्ध प्रणाली हमें कंफ्यूज ना कर दे तो आगे जब इसका कंक्लूजन हमने दिया है वो बता देते हैं. तो जो डिवियंट सिद्ध प्रणाली है बेसिकली क्या है आपको संक्षेप बता देते हैं. डिवियंट सिद्ध प्रणाली जो शुरू किया गया था वो कहाँ पे, पीछे दिखाइए एक मिनट आगे आगे चलिए. डिवियंट सिद्ध प्रणाली ओरिजिनेट्स विद रूप कविराज अवेगॉट डिसाइपल ऑफ हेमलता ठकुरानी श्रीनिवास आचार्य डॉटर. तो बेसिकली क्या है, ये लोग क्या करते हैं जो बोगस बाबाजी हैं सो कॉल्ड तथाकथित ब्रज में घूम रहे हैं या जगन्नाथपुरी में भी हैं, वो क्या करते हैं जिस दिन आप दीक्षा लेने जाते हैं उसी दिन आपसे सिद्ध प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं, बोलते हैं आप मेडिटेट करो कि आप सखी हो, आप ब्रज में वास कर रहे हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, 1,00,000 नाम, 2,00,000 नाम, यही प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए नेक्टर डिवोशन पेज नंबर 127। द फर्स्ट इवेशन इज टू प्री मेच्योरली इमेजिन वंस एटर्नली परफेक्ट स्पिरिचुअल फॉर्म सिद्ध रूप। Srila Prabhupada writes that deviants imagine that they become associated with the Lord simply by thinking of themselves like that. And according to our acharyas, realization of our Siddha Roop develops gradually when our heart becomes purified. Second deviation is that their proposal that the Vraj Log, residents of Vrindavan, refers exclusively to residents of Vrindavan Krishna Leela such as Roop Manjari and not to the residents of Vrindavan in Gaur Leela such as Roop Goswami. तो ये प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वास्तव में इस प्रकार का विचार रखते हैं कि पहले दिन वो दीक्षा दे रहे हैं आपको और आपको बता रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि आप एसोसिएट बन चुके हो। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन बनता है और उसको बोला जाता है अब आप पॉलिटिशियन बनने लगे हो, आपने पॉलिटिशियन का वेश धारण कर लिया है और आप इमेजिन करो कि आप चीफ मिनिस्टर हो, आप इमेजिन करो कि आप उस देश के प्राइम मिनिस्टर हो, है ना, लोग क्या सोचेंगे, पागल सोचेंगे, है कि नहीं। तो इमेजिन करने से क्या होगा, तो प्रभुपाद कन्वर्सेशन बड़ा अच्छा बता रहे हैं, तो इसका एक कन्वर्सेशन भी बहुत सुंदर कन्वर्सेशन आगे दिखाई। मॉर्निंग वॉक June 7, 1976 लॉस एंजलिस में एक कन्वर्सेशन हुआ गाड़ी में, कार में। तमाल कृष्ण महाराज पूछ रहे हैं व्हाट डज इट मीन श्रीला प्रभुपाद सिद्ध प्रणाली, प्रभुपाद सिद्ध प्रणाली इज नॉनसेंस। एक लाइन में बस प्रभुपाद आंसर करते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर सिद्ध प्रणाली रामेश्वर, द इनिशिएशन दैट यू आर गिवन, यू आर सिद्धास, यू आर एटर्नल पोजीशन। तमाल कृष्ण, दे आर सम वेरी स्ट्रेन नोट्स, यू शुड सी दिस नोट्स। रामेश्वर, यस आई हैव रेड देम ऑलरेडी। तमाल कृष्ण, यू डिड। प्रभुपाद, दे हैव लर्न इट फ्रॉम दिस राधाकुंड बाबाजी। तमाल कृष्ण, राधाकुंड बाबाजी, प्रभुपाद बाबाजी, यस आफ्टर ऑल दे आर फूल्स रास्कल्स सो व्हाट एवर दे से। प्रभुपाद बिल्कुल ब्लंट हैं, हम तो फिलॉसफी भी बता रहे हैं, प्रभुपाद बिल्कुल ब्लंट आंसर देते हैं। प्रभुपाद, दैट्स ऑल राइट, अथॉरिटी वेयर, व्हाट इज दैट, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, व्हाई दिस रास्कल्स डू नॉट टेक लेसन्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, दैट वी आर ऑल रास्कल्स फूल्स। गुरु वरे मूर्ख देखी कुरीला शासन, चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रकाशन सरस्वती को, ये क्यों नहीं कहते ये लोग, दे विल नॉट टेक द लेसन्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, दैट वी आर रास्कल्स फूल्स। दे विल टेक द राधारानी भाव, when Chaitanya Mahaprabhu's teaching by his practical life, that we have to take. Rameshwar, there is one statement Prabhupada regarding devotional service in reverential mood, so they are fonts of quote, they are quoting that this reverential devotional service is an impediment towards developing pure love. Another place they quote regulative principle are a hindrance on the path, because there is a statement that I think Yamunacharya says, Prabhupada who? Tamal Krishna, there is a statement somewhere in one of your books that one when attains the highest platform, प्रभुपाद पूछ रहे देर वेर इज दैट हाइस्ट प्लेटफॉर्म। तमाल क्वेश्चन, यस देर नो क्वेश्चन ऑफ इट। रामेश्वर, वन मस्ट गो थ्रू स्टेजेस, प्रभुपाद कहते हैं यस। फिर रामेश्वर बोलते हैं प्रभुपाद, रामेश्वर पूछ रहे हैं प्रभुपाद से, बोल रहे हैं प्रभुपाद, यू गेव द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंग टू गेट एन एमए डिग्री, यस प्रभुपाद कह रहे हैं, वन हैज टू कम टू द हाइएस्ट स्टेज, इट इज नॉट फॉरबिडन, दैट मे बी आइडियल बट नॉट फॉर द न्यू फाइट्स, यू मस्ट, one who does not know ABCD, what he will know about MA degrees? That they do not know. They think that they have already passed MA degree, that is their fault. There's another statement I saw them where it says, it's a quote, that you can treat Krishna as your lover and Krishna will reciprocate. And they underline two words, you can treat Krishna as your lover. In this way, they are taking your quotes out of context. That is one of the main ideas in their philosophy, is that living entity can desire to have any relationship he wants with Krishna. Prabhupada, that is all right. Prabhupada keh rahe hain ki aap Krishna ke saath koi bhi sambandh sabit kar sakte ho. I already explained, first deserve, then desire. Tamal Krishna and Rameshwar, deserve, then desire. Oh, Prabhupada, you are a rascal, how can you desire? You have no qualification, you desire to high court judge, what is this nonsense? But then they have answer. What is that answer? Prabhupada puch rahe hain. Rameshwar Swami keh rahe hain, let us just try it anyway to keep my mind thinking. Prabhupada keh rahe hain, how can you try it? First of all, be qualified, a big lawyer. Then you can become high court judge. Where is that qualification? You are after illicit sex and bidi, and you want to be associated with gopis? Rameshwar Swami kehte hain, they said in ISKCON, we do not, Prabhupada, let them say all nonsense, they are disqualified Sahija Babajis. That is all. Tamal Krishna. There is over 40 of them in this temple. Kisi temple mein, Prabhupada bol rahe hain, kisi ek ISKCON temple mein 40 aake ghus gaye, is tarah ke log. 50, there is 50 of them in this temple. Prabhupada, Rameshwar, oh really? Tamal Krishna, yes. Harishwari, a women's group and men's group. Tamal Krishna, there is a women's group with about 25 or 30. Harishwari, the thing is that they are going around, they are soliciting for people to come and join their group. And then immediately they come, they immediately take them into all details of gopis with Krishna. Prabhupada, unless they follow regulative principle, there is no place for that in the temple. Prabhupada spasht bol rahe hain. As a Sahija logon ke liye mandir mein koi sthan hai. Prabhupada, that is their fault. They want to utilize the love affairs of Krishna and the gopis for their debauchery. That is support for their debauchery. That is Sahijya. That's the meaning of Sahijya. Thoda aage badhte hain. We are restricting. No illicit sex. They will put that. Here is illicit sex between gopis and Krishna. So we can do that. Prabhupada, that is a danger. Because if they at once go to Ras Leela, because they are not trained up, neither they are liberated, they will think that this Ras Leela is just like our young boys and young girls mixed together. They have sex like that. Why should we restrict to no illicit sex, no this, no rules and no regulations? We shall do all nonsense, that's all, and become a gopi. It's a very good to aspire to become high court judge, but how can you become high court judge without qualification? That they are not thinking. They have no qualification. They have illicit sex, pregnant, going to abortion, and they are high court judge. ऐसा हो रहा है ब्रज में हो रहा है प्रभुपाद बता रहे हैं दे से अजामिल हैड नो क्वालिफिकेशन ही चैंटेड प्रभुपाद अजामिल हैड नो क्वालिफिकेशन देयरफॉर दे शुड आल्सो हैव नो क्वालिफिकेशन प्रभुपाद दे से नाउ यू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी दे से व्हाट इज दे व्हाट दे आर अजामिल्स क्वालिफिकेशन वॉज ही थॉट ऑफ कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ प्रभुपाद यस बट यू कैन नॉट थिंक रामेश्वर दे वॉन्ट टू थिंक ऑफ द गोपीज एट द टाइम ऑफ डेथ प्रभुपाद What they will think at the time of death, why you are conjecturing now? Their habits are rascal, they are making pregnant, illicit sex, what they will think? Anyway, if they give indulgence to these people, then preaching work will be hampered. Sabse bada kya nuksan hoga? Preaching band ho jayega. Prabhupada, or they should be separated, otherwise will be bad example, restrictions will be broken. To is tarah se Prabhupada samjhate ja rahe hain aage. Phir aage puch rahe hain, jaise ki abhi Vasundhara Prabhu ne bhi prashn uthaya tha, yahan puch rahe hain. यहां पे क्या लिखा है रामेश्वर श्री प्रभुपाद एज अ डिवोटी इज एन ओरिजिनल रिलेशनशिप विद कृष्णा सुसिद्ध दे व्हाई इज इट दैट शी समटाइम चेंजेस ओरिजिनल रसा विद कृष्णा प्रभुपाद चुप है रामेश्वर बोल रहे ईच वन ऑफ एज एन ओरिजिनल रिलेशनशिप विद कृष्णा सम ए प्लांट सम ए स्ट्री सम ए काउ सम ए काउड बॉय सो इफ दैट इज री एस्टैब्लिश व्हाई शुड द डिवोटी डिजायर टू चेंज इट Prabhupada kehte, well, that is spiritual kingdom. You can change if you like. Tamal Krishna. It is not static. Prabhupada once explained, love is not static. Prabhupada, generally it is not changed. Just like Mother Yashoda, she is mother at all time, eternally. The question came in Bombay 2 or 3 years ago. Prabhupada said that it is not static. Harishwari, I always understood before that rasa was fixed, but that within the rasa one may take a different time. Prabhupada kya keh rahe hain, dekhiye agla line. That will reveal when you are liberated. Why you are bothering now? A patient is thinking, how shall I dance when I become healthy? Prabhupada example there. First of all, rascal become healthy. Then talk all of this. Rascals are thinking like that. You are patient. First of all, cure your disease, material disease. Then talk all of this. When I will get rich, how shall I treat? Then my wife is disobedient. I shall kick her like this. And as soon as he kicked on the other parts, all broken. So, this prakar Prabhupada is conversion clear bata rahe hain. Aur Prabhupada yahan par aage chalkar bahut heavy statements de rahe hain. Jo aap sunna chahenge to main bata raha hoon. Prabhupada bol rahe hain, the books are there for reading. By reading you become purified. In 1935, Guru Maharaj Bhakti Siddhanta Sari Thakur, he went to Radhakund for Kartik Brat. So at that time he was reading Upanishads. So first of all, these Babajis were coming. Bhakti Siddhanta Saraswati had come at Radhakund. He is giving some class. So they used to come. But as soon as they saw he was reading Upanishads, they stopped coming. They saw they are Jnani, they are not Bhaktas. Tamal Krishna, what they wanted to hear? Dasam Skand. Prabhupada like that. So Prabhupada condemned them. They are not living in Radha Kund. They are living in Narkukund. I heard it. They are living in Narkukund. Prabhupada kehte maine apne guru maharaj suna hai ye kehte hue. So our men who go to Radha Kund and live there, Prabhupada, yes, Hari Shori, they are seeing living in Narkukund. I remember one boy was living there for about 3 months and he got very angry. I told him there were already enough monkeys in Radha Kund. Do not try to jump over like a monkey. So basically, Siddha Pranali is a process. It is there. But not at the stage when we are struggling with anarthas. Not at the stage when we are just initiated by the spiritual master. Ye wo stage mein aata hai, jab koi asakti ka stage cross karta hai, और अपना स्वरूप प्राप्त करने लगता है तो एकादश लक्षण प्रकट होते हैं, 11 लक्षण प्रकट होते हैं. और वो 11 लक्षण जो है भक्तों ठाकुर ने जय धर्म में बताया है. जय धर्म में 40 अध्याय हैं और रस तत्व का जो लास्ट सेक्शन है वो 26वें अध्याय से शुरू होता है. और ये जो बात कर रहे हैं ये पहले भी नहीं बात कर रहे हैं कि आप सिद्ध प्रणाली अभी दे देते हैं हम. लेकिन भक्ति ठाकुर कोट करते हैं कि भक्ति ठाकुर ने तो देखिए जय धर्म में सिद्ध प्रणाली की बात की है. हाँ बात की है, लेकिन 26वें अध्याय में जांच सेक्शन का टाइटल है रस तत्व. इन चैप्टर 39 चैप्टर का टाइटल देखिए, एंटरिंग लीला. लीला में प्रवेश करने से पहले भक्ति ठाकुर डिस्कसेस अबाउट एकादश भाव. एकादश भाव आर फर्स्ट रिलेशनशिप, अभी इंग्लिश टर्म्स बढ़ रहे हैं हम, सेकेंड एज, थर्ड नेम, फोर्थ पर्सनल फॉर्म एंड ब्यूटी, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स वेश, सेवन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, एट रेसिडेंस, नाइन सेवा, टेंथ समिट ऑफ इमोशन विच इज एस्पिरेंट्स वेरी लाइफ ब्रेथ, देन 11th द सेंटिमेंट्स ऑफ द मेड सर्वेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री राधा. मेडिटेशन ऑफ वंस सिद्ध दे डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ वंस गुरु बाय रिमेंबरिंग एंड इंटरनली सर्विंग द अष्टकाली लीला इन वंस सिद्ध दे वन ग्रेजुअली अटेन स्वरूप सिद्धि. Realization of one Swarup while still a sadhak and finally Vasu Siddhi. A sadhak meditates on Ekadash Bhav at the stage of Bhav Bhakti and gradually attains the stage of complete success. The stage of spiritual ecstasy is called Bhavanapan Dasha and the stage of attaining higher success of Prem is called Prem Sampati Dasha. In the 39th chapter of Jaya Dharma, Goswami tells Vijay, ye do logon ke beech mein charcha chal rahi hai, to Goswami tells Vijay, you already understood the Ras Tattva. There are 11 bhavas with respect Upasak, Parikrishti. You have gained almost all of them, but you need to be somewhat more firmly established in them. आप सुन रहे हैं कब बोल रहे हैं? ये 39 चैप्टर में गोस्वामी विजय को बता रहे हैं कि तुम्हें रस तत्वों के बारे में जानकारी हो गई है. और रस तत्वों के बारे में जानकारी कब होती है? जब कोई भाव की अवस्था में पहुंचता है. There are 11 bhavas, लेकिन इसके बारे में तुम्हें और थोड़ा सा firmly established होना पड़ेगा. इसलिए वहां पर गोस्वामी जो है उनको एकादश भाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं. प्रॉब्लम विद दिस प्राकृत सहिज्ञा इज दैट दे आर इंस्ट्रक्टिंग न्योफाइट सिद्ध प्रणाली वेयर दे आर स्ट्रगलिंग विद अनर्थास. और बाकी कल हम लेंगे. श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरी ठाकुर कोट्स फ्रॉम द बुक प्राकृत रस शतदूषणी अ बंगाली पोएट्री रिटर्न इन 1916. करेक्ट करिए इसको, 1960 में नहीं थे. तो ये हम कल बताएंगे इसके बारे में. फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट विच रिफ्यूज मिसकंसेप्शन ऑफ प्राकृत सहिज्य. तो इसमें से हम लोग कल डिस्कस करें. हरे कृष्ण. तो यही विराम देते हैं, समय काफी हो गया है. हरे कृष्ण.